أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين سب سے پہلے آپ تمام مومنین سے دونوں السلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے بھی ہوں گے اور پچھلے سیشن سے کچھ استفادہ حاصل کیا ہوگا کیونکہ کچھ فیڈ بیک موصول ہوا ہے اس کے حساب سے یہ خوشی ہوئی کہ کافی لوگوں نے بہت پازیٹیولی رسپانس کیا ہے اور کافی چینج تو نہیں فی الوقت ابھی لیکن کچھ نہ کچھ چینج کا آغاز محسوس کیا ان لوگوں نے گھروں کے اندر ان ٹپس اور ان اسٹریٹجیز کو فالو کر کے جو ہم نے کچھ سیشنز میں بیان کی تھی. آج کے سیشن کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور اسٹارٹنگ میں تھوڑا سا برین اسٹارمنگ کے لیے آپ لوگ تاکہ آپ لوگ کی اذان عالیہ تھوڑے سے بیدار ہو جائیں تو آپ لوگ کی جنرل نالج کی کچھ جنرل ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں. تو سوال کے طور سے آپ لوگ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ جو انسانی زندگی کے مراحل ہیں ایک دفعہ انگلش میں اور ایک دفعہ اردو میں کون بتا سکتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کیا کہلاتا ہے اور پھر جب بڑھتا رہتا ہے اور پھر آخری عمر تک اس کو کیا کہا جاتا ہے. کیونکہ جو ہمارا سیشن ہے اس میں ہم نے ایج کے حساب سے جو ہے ڈیوائڈ کیا ہے کہ آپ کی جب اسپیسیفک ایج میں ہوتے ہیں آپ تو آپ کی کیا سائیکالوجی ہوتی ہے اور اس سائیکالوجی کے تحت آپ یعنی بینگ اے پیرنٹ بینگ اے مینٹور آپ نے کیسے ان مائل اسٹونس کو جن کو ہم ڈیولپمنٹل مائل اسٹونس کہتے ہیں وہ حاصل کرنے چاہیے. تو کوئی آپ میں سے بتانا چاہے گا کہ جب کوئی انسان دنیا میں آتا ہے تو کیا کہلاتا ہے پھر جیسے جیسے عمر آگے بڑھتی ہے تو کیا کہتے ہیں اسے. میڈیکل ٹرمینالوجی کے اندر وی سے سم تھنگ اولڈ ایج کے بعد بھی ایک اور فیز ہوتا ہے. جی جی کوئی اور اس میں کچھ جو دو تین پوائنٹس کریکٹ کرنے کے کوئی کسی نے نوٹس کیے کوئی میڈیکل بیک گراؤنڈس ہیں یہاں پر جو جی اچھا پہلا جو فیٹس از ناٹ آفٹر برتھ از ناٹ فیٹل فیز ٹھیک ہے نا جب آپ کی برتھ ہو جاتی ہے اس بیسیکلی پوسٹ نیٹل فیز ہے نا تو جس کو ہم انفینٹ وہ اپ ٹو فور ویکس بیسیکلی وی کال اٹ یہ آپ تھوڑی سی ٹرمینالوجی کا فرق ہے جب ہم برٹش سسٹم میں جاتے ہیں امیرکن سسٹم کے اندر نا تھوڑا سا تو بارل ان جرنل اپ ٹو فور ویکس از بیسیکلی پوسٹ نیٹل ایج نا تو فیٹس اس ٹائم میں جب ایگ فرٹیلائز کرتے ہیں ان سائڈ دا مدر ووم نا تو فیٹل ایج بیسیکلی برتھ سے پہلے کی ایج ہے ٹیکنیکل ٹرم کے اندر نا تو فیٹل ایج یعنی جب تک آپ ان سائڈ دا مدر ووم ہیں تو ہم اس کو پھر اس کے فیزز ہیں نیو نیٹ ایگزیکٹلی جو نیو نیٹل فیز ہے جس کو ہم پوسٹ نیٹل فیز کہتے ہیں تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ون ویک سے لے کے ایکچوئل کلاسیفیکیشن میں فرق ہے اپ ٹو فور ویکس میکسیمم اینڈ دین وی اسٹارٹ ود دا انفینسی انفینٹ ایج ٹھیک ہے نا. چلیں جی کوئی اور اس میں چیز ایڈ کرنا چاہے گا. چلیں جی اب کوئی اردو میں بتا دے کہ اردو میں کیا کہا جاتا ہے ان بچوں کی ایجز کو جب وہ پیدا ہوتے ہیں کیا کہلاتے ہیں پھر بڑے ہوتے ہیں پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان تمام ایجز کے نام دیے گئے ہیں کسی کو آئیڈیا ہے کہ ان کو کیا کہا جاتا ہے. جی کچھ بھی بولتے ہیں مطلب جیسے ڈاکٹر صاحب نے اٹیمپٹ کیا ویری گڈ کہ آپ کم از کم جاگ جائیں گے نا کم از کم دماغ تھوڑا سا بیدار ہو جائے گا. صبح کا وقت ہے سنڈے کا دن ہے پتہ نہیں ناشتہ آپ لوگوں نے کیا یا نہیں کیا کیونکہ بچوں کو ڈراپ کرنا ہوتا ہے تو ویسے جلدی ہوتی ہے تو تھوڑا سا ناشتہ نہ ملے تو یہ دماغ کی نیورونز کو بیدار کرنے کے لیے ایکٹیویٹی ہے تھوڑی سی. آپ لوگ سوچیں بتائیں کہ جب پیدا ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے ان کو. جی بتائیں کوئی بھی کنفیوز نہ ہو مطلب غلط ہو غلط بتائیں گے تو یہ کریکٹ ہوں گے نا. بہترین بالکل صحیح ورڈ استعمال کیا ہے. تو وعلیکم السلام. جی جی نوزائیدہ بیسیکلی جو میڈیکل ٹرم ہم اس کو اوور لیپ کرتے رہتے ہیں تو نوزائیدہ بیسیکلی جو نام لیا گیا بیسیکلی اس کو ہم پوسٹ نیٹل ایج کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی اپ ٹو فور ویکس تک تو یہ نوزائیدہ کہلاتے ہیں. ये नौ जायदा या नौ मौलूद जी। इसके बाद आगे बढ़े थोड़ा सा, अगर हम जहन को यानी अप्लाई करें तो आंसर मिल जाएगा।
चलें बचपन कहते हैं,
नहीं बचपन से पहले भी एक फेज है, डायरेक्ट बचपना नहीं आता। बेहतरीन, एग्जैक्ट वर्ड जो इंग्लिश में इन्फेंसी कहा जाता है वो बेसिकली शेर ख्वारगी का, और ये कब तक होता है? जी जी, जिन लोगों ने कुरान पढ़ा है लिखा हुआ, यानी आप कब तक बच्चे को शेर पिलाते हैं? 2 ईयर्स तक। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ फर्क है यानी टर्मिनोलॉजी के अंदर, जो वेस्टर्न है यहाँ पर, तो इसको फिर हम एक और वर्ड इसमें ऐड करते हैं टॉडलर का, यानी जब दांत निकल रहे हैं बच्चे के, तो 1 साल तक और देन अप टू 2 एंड 3 ईयर्स, तो इसको हम बेसिकली इन्फेंसी का फेज भी डिक्लेयर करते हैं, लेकिन इस्लामी लिहाज से इन्फेंसी बेसिकली 2 ईयर्स तक है, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर इसको हम अप टू 3 ईयर्स तक लेके जाते हैं। उसके बाद कौन सा मरहला आता है? अभी ख्वार ने एक जुमला इस्तेमाल, लफ्ज इस्तेमाल किया था, तो बचपन से पहले भी एक और फेज है। जी जनाब, अब बच्चे के, जिनके बच्चे अब थोड़े से बड़े हो गए, तरह वो रिकॉल करें कि किस ईयर में क्या क्या करते रहते हो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। बचपन से पहले, जी जनाब, लाम से आता है। अब इतनी और कितना आसान करूंगी, लड़कपन, ठीक है ना, जिसमें वो क्रॉलिंग स्टार्ट करता है बच्चा, फिर आता है बचपन, और फिर बचपन को फिर हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कौन से? अब ये इस्लामी, वेस्टर्न नहीं मिलेगा अभी क्लासिफिकेशन नहीं, अब ये इस्लामी और उर्दू में, तो बच्चे को हम किन दो फेज में डिवाइड करते हैं? टीन एज का जुमला है, उससे पहले की बात हो रही
है,
इसलिए मैंने बोला इस्लामी थोड़ा देखें आप, तो मुमैयद और गैर, तो आपके पास जो फेज 2 साल से लेके, पहले हम बात करेंगे जो आपके पास शेर ख्वारगिया फेज है वो 2 साल तक है, और 2 से 5 साल तक आप इसको बेसिकली लड़कपन, एंड फिर बचपन जो है वो बेसिकली आपका 12 साल तक रहेगा। तो इस 12 साल को फिर हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, मुमैयद और गैर मुमैयद, वो बच्चे के जिनमें थोड़ा सा सेंस डेवलप हो चुका है, जिनमें कम सेंस डेवलप हुआ है, तो जो गैर मुमैयद है जिनमें कम सेंस डेवलप हुआ है, ये 12 साल तक फेज चलते हैं। तमाम 12 साल तक बच्चों को हम बच्चे कहते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी बेसिकली चिल्ड्रन कहलाते हैं, 2 साल से लेके 5-12 साल तक मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर चिल्ड्रन कहते हैं। इसलिए अगर आप कफ सिरप उठाएंगे तो डोज जो लिखी होती है उसको लिखा होता है चिल्ड्रन डोज, ये है जो बच्चों को वैसे कहते हैं पीडियाट्रिक्स, ठीक है ना, तो पीडियाट्रिशियन जो है वो लिखता है पीड्स डोज में लिखा होगा बेसिकली 2 साल तक इतनी है, 6 महीने तक इतनी है, और 2 साल से 12 साल तक के बच्चों के लिए यानी चिल्ड्रन के लिए ये डोज है, ठीक है जनाब। उसके बाद 12 साल के बाद टीनेज, क्या कहते हैं टीनेज को उर्दू में? जवान हो गए डायरेक्ट, नौजवान, नौ यानी नए नए जवान हुए भी है, जिसको बलूगत का नाम दिया गया था, जारी बात है। अब यहाँ पर मेल फीमेल का थोड़ा सा डिफरेंस है, तो बहरहाल अब जो 12 साल से अबव एंड 18 ईयर्स तक, अप टू 18 ईयर्स, ठीक है, कुछ जगह में 17 साल भी, 12 इसमें नहीं जा रहे हम। उसके बाद क्या हो गए, जो हर कोई नजर आना चाहता है, जवान, ठीक है। अभी जवान कहाँ तक होता है, फिर अगेन देर डिफरेंस 48 एंड 45 ईयर्स बिटवीन अडल्ट एज, जो अडल्ट एज होती है ये 18 साल से लेके 40 साल, 42 साल और 45 साल। ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर कोई टेक्निकल बंदा बैठा हो तो वो काउंटर आर्गूमेंट ना करे कि भाई जापानीज लिटरेचर से इसके 42 ईयर्स एंड अमेरिकन से 40 ईयर्स एंड ब्रिटिश से लाइक 45 ईयर्स। अब ऐसे नई क्लासिफिकेशन के तहत जो अभी नोबेल प्राइज जो दिया गया है लास्ट 3 ईयर्स बैक, तो अब कॉन्सेप्ट नया आ गया है, अब आप 60 साल तक जवान हैं, ठीक है ना, न्यू क्लासिफिकेशन। तो अभी बहुत सारे जो अभी अपने आपको बूढ़ा समझ रहे हैं वो बच्चे हैं टेक्निकली, नई मेडिकल जो रिसर्चेज और डिस्कवरीज और थ्योरीज आई हैं उसके तहत, ठीक है जनाब। उसके बाद 45 साल ले लें हम एवरेज, एंड देन उसके बाद अधेड़ उम्र, ठीक है जनाब, और उसके बाद बूढ़े हो गए कब तक? अब इसमें फिर दूसरी है कि ओल्ड एज कब तक है, 60 भी और 65 भी, दोनों क्लासिफिकेशन इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई अगर पढ़े तो कंफ्यूज ना हो। तो बूढ़े हो गए आप, उसके बाद क्या होते हैं आप? बूढ़े के बाद क्या होते हैं? एग्जैक्टली, तो दैट्स ए जेरियाट्रिक फेज, अबव 65 जेरियाट्रिक होता है। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मेडिकली? क्योंकि जब हम डोज कैलकुलेट कर रहे होते हैं दवाओं की, तो ये एज का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको प्योर साइंटिफिक इस्तेमाल में कहते हैं ऑन्टोजेनिक वेरिएशन, कि जो आप जिंदगी के इन मराइल से गुजरते हैं पैदाइश से लेके ज़यीफ़ी तक, तो इसमें आपके बदन के अंदर मुख्तलिफ तगैरात होते हैं, आपके सिस्टम के अंदर फंक्शन के लिहाज से भी, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो इमोशनल चेंजेस भी होती हैं, फिजिकल चेंजेस भी होती हैं। तो इन फिजिकल चेंजेस की वजह से और इमोशनल चेंजेस की वजह से जो हार्मोनल बैलेंस होता है आपके सिस्टम के ऊपर, तो ये आपके दवा के ऊपर असर रखता है। तो आप दवा के मिकदार को बच्चों में कम देते हैं, बूढ़ों और ज़यीफ़ों में कम देते हैं, और एडल्ट में वो नॉर्मल डोज, जो नॉर्मल डोज एडल्ट में होगी, बच्चों और बूढ़ों में वो कम दी जाती है। तो इसलिए मेडिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें एज जो है वो इसलिए पूछी जाती है। तो इसलिए टिप के तौर पे, एडवाइस के तौर पे, सजेशन के तौर पे, कि ख़वातीन अगर डॉक्टर्स के पास जाएं तो खुदारा करेक्ट एज बताया करें। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डायग्नोस्टिक लेवल पर भी, चूँकि जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं आपके ब्लड के या दीगर चीज़ों के, ये एज डिपेंडेंट भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो अगर आप एज छुपाएंगे तो कोरिलेट जब करने जाएगा, अगर आपने एज उसको रॉन्ग बताई तो आप बताएंगे ये है, हो सकता है कि वो आपकी एज क्या है, चूँकि आपने एज कम बताई और उस एज के अंदर काउंट्स अलग होंगे, वो समझेंगे ये नॉर्मल है। तो जब नॉर्मल इसके माने बोलेंगे डिजीज ये वाली नहीं, तो आपके डायग्नोसिस भी रॉन्ग होंगी और फिर जो डोज कैलकुलेशन है वो भी फिर रॉन्ग हो सकती है। तो इसलिए अपनी एज छुपाया ना करें, एटलीस्ट जब डॉक्टर्स के पास जाएं, ठीक है, उसको बताएं कि करेक्ट एज है, ताकि डायग्नोसिस जो है वो करेक्ट करें एंड डोज कैलकुलेशन भी फिर आपकी करेक्ट हो सके। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़, ठीक है। तो आपको एजेस के फेस समझ, तो जब हर फेस के अंदर आपकी नफ्सियात मुख्तलिफ होती है, तो अगर आप अपने बच्चे की नफ्सियात को समझ लेंगे, इसके लिए टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, कि जब बच्चा एक साल तक का है तो उसका डेवलपमेंट माइलस्टोन अपने उन वालदैन के जहन में क्लियर होना चाहिए, ताकि वो मैच कर सकें कि एक साल के अंदर मेरे इस बच्चे का डेवलपमेंटल माइलस्टोन अचीव हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसमें मेरी मिस्टेक थी, या बेसिकली जो माहौल है उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, या फिर ऐसा सकते हैं कि बच्चे के अंदर ही डेवलपमेंटल डिले है, यानी जैसे ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं, ADHD के पेशेंट होते हैं, ऑटिज्म के पेशेंट होते हैं, सारे के सारे जो हैं वो किड्स डेवलपमेंटल डिले शो करते हैं अपनी डेवलपमेंट के एज के एतबार से। उनको कैसे आपने जो है वो टैकल करना है, मैनेज करना है, एक तो मरहला होता है वो स्पेशल स्कूल्स में जाता है, वो स्पेशल स्कूल में जाता है, जारी बात है वो उनका एक फेज़ है, लेकिन घर के अंदर कैसे डील करना है ऑटिस्टिक चाइल्ड को, तो कुछ चीज़ें हम यहाँ टच अपॉन कर देंगे यहाँ पर, लेकिन बहुत ही सुपरफिशियली। तो वी स्टार्ट, पहला फेज़ जैसे हमने बात की इन्फेंसी का फेज़ है, जो कि इस्लामिकली 2 ईयर्स तक होता है, लेकिन हम इसको डिवाइड करें टॉडलर फेज़, जो कि 1 साल एंड अबव है, एंड इन्फेंसी बेसिकली अप टू 1 ईयर। तो आपको इस फेज़ के अंदर अपने बच्चे की बुनियादी नफ्सियात का पता होना चाहिए। अच्छा, चूँकि हमने जैसे लास्ट सेशन में ये बयान किया था कि नफ्सियात के लिहाज से आपकी पर्सनैलिटी जो है बेसिकली 4 पर्सनैलिटीज हैं, देन डिवाइडेड इनटू फर्दर 4 यानी 16, तो आपको कम से कम बच्चे की ज़ाहिरी एक्शंस देख के ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका बच्चा किस एंगल में जा रहा है, उसकी क्या परवरिश के लिहाज से उसकी नीड्स को जब मुझे फुलफ़िल करना है तो मुझे सबसे पहले उसको जानना होगा। जैसे डॉक्टर बीमारी की तशखीस के लिए सिम्टम्स को देखता है और फिर तशखीस देता है कि इन सिम्टम्स के बुनियाद पर अगर बीमारी ये है तो दवा ये होगी। दवा भी बहुत सारी होती है, उसमें भी चूज करते हैं कि इस वाले पेशेंट के अंदर, जैसे अगर हम दिल के अमराज में से ब्लड प्रेशर जो कि कॉमन है उसकी बात करें, तो जो ब्लड प्रेशर के अमराज की दवाएँ वो उसकी 8 क्लासेज, समझ लें 8 फैमिलीज हैं मुख्तलिफ, हर फैमिली में 10-10, 12-12 दवाएँ, लेकिन हर पेशेंट को हर दवा सजेस्ट नहीं की जाती। क्यों? कि जो जिस किस्म की उसके ब्लड प्रेशर की सिचुएशन है, तगैर आता है उसमें, और इसके अलावा उसको और भी कोई अमराज होंगे, तो कुछ ब्लड प्रेशर की दवाएं आप तमाम पेशेंट में नहीं दे सकते। तो जो उसकी कंडीशन होगी उसी कंडीशन के अतबार से जो है वो आप उसको वो दवा देंगे। इसी तरह बच्चे के अंदर उसके मुख्तलिफ एक्शंस को जज करके पेरेंट्स ने उसको उसी तरह ढालना है, ताकि वो माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हमने मगरबी इस्तेला इस्तेमाल कर लिया कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन, हमारा असल माइलस्टोन क्या होना चाहिए? बच्चे की तरबियत के अंदर, चाहे वो 1 साल का हो, 3 साल का हो, 8 साल का हो, 12 साल का हो, 17 साल का हो, हमारा असल माइलस्टोन होना चाहिए कि इसे अब्दे खुदा बनाना, नंबर वन माइलस्टोन। तो अब्दे खुदा बनाने के लिए कौन कौन से मराइल होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसको चाहिए इन इन एजेस के अंदर, और दूसरा डेवलपमेंटल माइलस्टोन ये होना चाहिए कि उसको राह ईमान के लिए तैयार करना। तो ये तमाम फिजिकल जो हम बात करेंगे सारी यहाँ पर उधारी बातें मेनली फिजिकल पैरामीटर्स के साथ, जो स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग है अपने चाइल्ड की, उसके अहदाफ भी आपके सामने इन एजेस में होने चाहिए। चूंकि ऐसा नहीं कि वो बड़ा हो जाएगा तो सीख जाएगा खुद से, जैसे कॉन्सेप्ट होता है कि तौजील मसाइल इसलिए नहीं पढ़ी जा रही कि मुश्किल है। अब वो अगर 15 साल में जाके बालिग हो रहा है तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो डायरेक्ट जब आज फर्स्ट डे बालिग हुआ तो जब आज खड़े होकर नमाज पढ़ेगा तो उसे किरात भी, अगर आपने उस पर काम नहीं किया तो किरात कैसे सही करेगा वो, क्या मुब्तिलात नमाज है क्या पता, क्या शकियात नमाज है क्या पता, कौन से शक में जो है वो नमाज बातिल हो जाती है, कौन से शक में बातिल नहीं होते, कौन से शख्स में आपने उसको मुकम्मल करने के लिए हीले शरे, यानी आपने या तो सजदे सहफ करना है या फिर आपने 1 रकत या 2 रकत क्या करनी है नमाज एहतियात, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो अगर बच्चे को बताई जाएँ उस वक्त जब वो बालिग हो जाए तो इसके माने जब तक वो लर्न कर रहा होगा तो इतनी नमाजें तो उसकी बातिल हो गई, फिर इसे क्या माने कि इसकी अपब्रिंगिंग पहले से स्टार्ट होती है। बच्चे को जो सिखाया जाएगा दीन हो या दुनिया हो, अच्छा बच्चे को जो है वो स्कूल तो हम भेज रहे हैं 3 साल की और 2.5 साल की, आपको पता ना यहाँ पर जो स्टैंडर्ड के स्कूल हैं दे हैव फिक्स द एज ब्रैकेट कि अगर 2 साल 4 महीने से लेके 2 साल 8 महीने तक के चाइल्ड की एज है तब हम लेंगे, वरना नहीं लेंगे, ओवर एज हो गया चाइल्ड। 3 साल का अगर हो गया तो ओवर एज हो गया वो, और वो नर्सरी में या मॉन्टेसरी के अंदर एडमिशन नहीं देंगे, क्यों, जो उनका करिकुलम बता रहे कि भाई इस एज में ये बच्चा आ जाना चाहिए आपके पास। तो कभी हमने इस पर सोचा नहीं कि जब इस एज में दुनियावी तालीम के लिए जो आपके पास मॉन्टेसरी सिस्टम हो, कह रहा है कि इस एज में लेके आओ, तो इस्लाम तो बात कर रहा है इस दुनिया में आने से पहले की। अभी हम कुछ अगर साइंटिफिक एविडेंसेस की बात करें तो आपको इसकी हसासियत का और अहमियत का अंदाज़ा होगा। जैसे हमने लास्ट वीक ब्रेक में जाने से पहले एक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, फिर वो बता नहीं पाए कि मेहराब का फ़लसफ़ा, ये मेहराब की शेप इस तरह क्यों है, तो उसके साइंटिफिक लॉजिक्स हैं, तो वो बयान करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा होगा बेसिकली इसके इम्पैक्ट्स कितने कितने मौसर भी हैं और कितने हसासियत के साथ, जिसको हम दर्क नहीं कर रहे हैं, मौजूद रखे हैं हकीकत के अंदर खुदा ने। जो मेहराब इस तरह बनाई जाती है, हमारे सिस्टम जो आपकी ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर मुख्तलिफ फोर्सेस भी हैं, ठीक है। तो आप ये दुनिया के अंदर आपको पता है 2 पोल्स हैं, साउथ पोल्स हैं, नॉर्थ पोल्स हैं, इसके दरमियान क्या है फोर्सेज हैं, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज होती है। एक फोर्स इक्वेटर के दरमियान है और एक फोर्स इन बिटवीन प्लैनेट है, जो इन बिटवीन प्लैनेट्स हैं उसको कहा जाता है कि ये 12,000 जूल्स हैं। अब ये जूल्स एक यूनिट है एनर्जी का, जो लोग फिजिक्स के हैं वो समझ सकते हैं। अगर 1 जूल की वेव से वाइब्रेशन क्रिएट कर दी जाए कहाँ पर, इस मदार के अंदर, तो दुनिया का ये जो प्लैनेट का निज़ाम आपका चल रहा है, यानी आप एक्सिस जो सूरज के गिर्द जो मदार है एक्सिस है, जो ये जितने आपके कितने प्लैनेट हैं इस कायनात में, 7, 8, 9, 7 या 9, ठीक है। वैसे गो एंड चेक एट द साइड ऑफ द नासा, आपके पास जो लास्ट मैंने चेक किया था तो कोई 242वां सैयारा जो है वो डिस्कवर हुआ था, क्योंकि हम वो सोशल स्टडीज़ वाली पढ़ते हैं कि जो ज़माने कदीम की है, तो नासा तो बता रही है कि अभी जो डिस्कवर है उसका नंबर जो है 242 है। तो इस निज़ाम शमसी की बात कर रहे हैं हम दीगर निज़ाम शमसी की, आप सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं निज़ाम शमसी का, निज़ाम शमसी के अंदर कायनात हैं, तो हम एक कायनात की बात करें जिसमें हम और आप रहते हैं, इससे मावरा भी कायनात हैं, इससे मावरा भी क्या हैं कहकशाएँ, कहकशाएँ यानी गैलेक्सीज, कितनी गैलेक्सीज हैं खुदा जाने, स्टैटिस्टिक्स जाएँ जो एस्ट्रोनॉमी वगैरह के ऊपर जिनको है तो उन वेबसाइट्स पर जाएँ, काम कर रहे हैं जो बेसिक वर्ल्ड के जो बड़े इदारे हैं, एक स्वीडन के अंदर हैं, एक स्विट्ज़रलैंड के अंदर हैं, अमेरिका के अंदर है, जो इस पर काम कर रहे हैं, जाएँ कायनात के अंदर कितने सूरज हैं, यानी हम इस कायनात की बात नहीं कर रहे, जितनी कहकशाएँ उन्होंने डिस्कवर की हैं अभी तक, 61 अरब सूरज है। क्या कह रहा हूं, 61 अरब, ये उनकी एस्टिमेशंस हैं, यानी जहां साइंटिस्ट अभी पहुंचा है, जो गैलेक्सी पे काम कर रहे हैं, जो उनकी हबल 3 पहुंची है, जहां तक देखने में जो उनकी कैलकुलेशन आई है उसके हिसाब से 61 अरब सूरज है। ये पूरा वजूद कायनात है, तो तदब्बुर तफक्कुर तफाहुम वजूद पे करेंगे तो आप उन कहकशाओं का मुशाहिदा करेंगे जो आपको वेस्ट मुख्तलिफ अंदाज में बयान करें, तो आप अपनी अहमियत समझें कि आपके वजूद में रखा क्या गया है। और एक वजूद के अंदर जब एक और वजूद पल रहा हो, कायनात के अंदर एक और कायनात हो, तो जहन को जुम्बिश दे के उन मराइल से गुजारें जो विजदान है, जहनी है, इससे वो मफाहिम दर्ज करने की कोशिश करें जो खुदा ने कम अज कम वजूद में रख दी है। अभी हम नहीं बात करेंगे आप रिसर्च करें हो, ये करें वो करें हो, तो खुद वजूद के अंदर ही तदब्बुर, तो ये चीजें आपको क्लू देती है वैसे। तो हम बात करें तो अगर आप एक जूल का इर्तियाज वेव्स को फैला दें, अगर इस मदार के अंदर ये मदार का निजाम गरम बरम हो जाएगा, यहां से हमें क्लू मिल सकता है कि जब ये कायनात, जब रोज़े क़यामत सूर फूका जाएगा, सूर क्या है, ये वेव्स हैं, तो ये जो वेव्स ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो इसके माने के अगर कायनात खुदा ने करने को, तो सूर ऐसा हो सकता है कि वो जूल, दिस इज माई इंटरप्रिटेशन, मे बी रॉन्ग, आई कैन जस्ट कोरिलेट साइंटिफिक बेसिस पर, जब सूर फूका जाएगा तो हर चीज़ कैसे हो रही है, तो मदार कैसे डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हो सकता है कि सूर जो फूका गया है वो बेसिकली जो आपके पास ईएमएफ फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और जो जूल्स हैं वो इस तरह इस प्रोपोर्शन में आ जाएं कि पूरा निज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाए विद इन सेकेंड्स। तो अगर आप एक जूल का इर्तियाज पैदा करते हैं, कायनात विद इन सेकेंड ख़त्म हो सकता है, पूरा मदार, ये पूरी गैलेक्सी कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी इतनी तो ये अपर अर्थ स्पेस में है, जो हमारे अतराफ में उसके जूल्स कम हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं जो कि सिंक्रोनाइज होती हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल के साथ, ठीक है। तो मैग्नेट, जब मैग्नेट के जब सेम पोल रखते हैं तो क्या होता है, रिपेल करता है, जब अपोजिट पोल रखते हैं तो अट्रैक्ट होता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है किस फॉर्म में होती है, स्क्वायर शेप में। तो जब एक आलिम खड़ा होता है तो इसलिए शर्त है हमारे यहाँ इमामत कौन कर सकता है, कि जो कि हलाल ज़्यादा हो, जो कि आदिल हो। आदिल से मुराद आसान लफ्ज़ों में कि बेसिकली जो गुनाह कबीरे सगैरा ना करता हूँ, लेकिन इसके माने ये नहीं कि ये तो फिर मासूम बन गया, जो गुनाह कबीरे भी ना करें, इसकी इंटरप्रिटेशन ये कि बेसिकली अगर कभी वो बादल ना खौसा सब गुनाह सरजद हो जाए तो फौरन तौबा करे, मुतवज्जो हो, ठीक, तो अदालत में रहेगा। तो जितना आदिल इमाम होगा, अब जब उसकी बॉडी से जो रेज इमिट हो रही हैं, अब ये भी जो उसकी भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रही है इमाम की मामूमिन को पर किस शेप में, अब ये शेप जो मेहराब है उस तरह की राउंडेड है, तो जब वो इसकी बॉडी से रेज इमिट होती है तो उसका इम्पैक्ट भी स्क्वायर के बजाय राउंडेड बनता है, और इसके हल्के में जितने मामूमिन खड़े होंगे उसके तकवे का इम्पैक्ट भी उस पर जाता है। क्यों लोग कोशिश करते थे कि आका बैजत बड़ी जगह नमाज, बड़ी मसाजिद में इमामत नहीं किया करते थे, छोटी छोटी मसाजिद, लेकिन गलियों तक नमाज पढ़ने वाले मौजूद होते थे। रीज़न, उस तकवे के असर को हासिल करना, फलसफा है इस्लाम ने एक एक चीज़ की फिलॉसफी दी है। तो जो माँ मौजूद है, जो कि अभी क्या है, मुरब्बी है उस बच्चे का, जो अभी उसके वजूद के अंदर पल रहा है, तो जो कुछ माँ कहेगी, करेगी, बोलेगी, खाएगी, लेटेगी, उठेगी, बैठेगी, सोचेगी, वो सब जब इमाम वहां खड़ा होके सब अगर वहां तक हो, उसके तकवे का असर भी वहां जाएगा, जो खुद बतन के अंदर मौजूद है उसके तकवे का असर नहीं पड़ेगा उस बच्चे पे। तो उनवानी तरबियत आगाज बेसिकली उस वक्त से होता है कि जब बेसिकली बच्चे बतन है मादर में। तो पहली तरबियत जो हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि सबसे पहले बच्चे को अच्छी तरबियत करने के लिए खुद वालदैन की तरबियत है, वालदैन की तरबियत होगी बच्चा तरबियत पाएगा। बहुत बेहतरीन तरीन जो किताब मुझे इस टॉपिक पर लगती है, तरबियत फर्जंद है, आयतुल्ला हुसैन मजाहिर के, इमाम खुमैनी के फर्जंद है। आप 100% आई वुड फोकस एंड सजेस्ट यू गो एंड रीड, बहुत आसान लफ्जों में जो तर्जुमा है बहुत ही आसान, तरबियत फर्जंद आयतुल्ला हुसैन मजाहिर की किताब। किताबें तो बहुत सारी, मसलन टाइम नहीं जिसके पास, वो छोटी सी किताब है बिल्कुल, रज़ा फरादियान की, वालदैन और सरपरस्तों की जिम्मेदारी, वो पढ़ लें। जिसके पास टाइम ज़्यादा है आयतुल्ला इब्राहिम अमीनी के ख़ानदान पढ़ लीजिए, ख़ानदान का इखलाक दूसरी किताब वो पढ़ लीजिए। तो जो हमने बात की थी ना कि हमारे यहाँ जो नाकामी का सबब, तरबियत ना होने का सबब मुआशरा इस तरह कि हमारे यहाँ जो अब शादियाँ हो रही हैं वो बग़ैर ट्रेनिंग हो रही हैं। तो शादी से पहले कम अज़ कम ये 6-7 किताबें तो पढ़ें ताकि ट्रेनिंग का पता तो लगे उसे कि शादी होती क्या है, अहदाफ़ क्या हैं, तरबियत के उनवानात अनावीन क्या हैं। जब तक ये मालूम नहीं होगा तो कैसे मुमकिन है कि वो सही तौर पर तरबियत याफ्ता बन सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग। एक जवान जब शादी की तरफ जाए तो कम अज़ कम फ़लसफ़ा इस्लामी से आगाह तो हो कि तरबियत, इस्लाम, अल्लाह, दीन, फैमिली, कुनबा, ये कॉन्सेप्ट कौन देगा आपको? ये वैस देगा? ये वो अफकार देंगे जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स पे किताबें? नहीं, ये वो देगा जिसने आपको पैदा किया है। उसके बनाए हुए कवानीन और फरामीन पता होंगे तो हम तरबियत सही कर सकेंगे, चूँकि उससे हम नाबलद हैं। तो शादी से पहले कम अज़ कम ये किताबें 7-8 किताबें बंदा पढ़े, ठीक है ना। घर एक जन्नत, हुसैन अंसारियान की बेहतरीन तरीन किताब है जो पढ़नी चाहिए हर एक को। घर एक जन्नत आयतुल्ला हुसैन अंसारियान पढ़ें, 350 पेज की किताब है। हर गोशा एड्रेस किया है, वेन यू आर लाइक फादर, वेन यू आर लाइक सन, यानी घर के अंदर आपका रोल क्या है, बाप, भाई और बेटा। अगर आप औरत हैं, माँ, बहन, बेटी, ठीक है। तो ये तीन रोल के अंदर, ये तीन फेज के अंदर, ये तीन स्टेज के अंदर आपके क्या माइलस्टोन्स होने चाहिए, फैमिली की नस्बत, मुआशरे की नस्बत और ख़ुद की नस्बत। पढ़ें, गाइडलाइंस हैं ये। तो मैं तो आपको जो चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ तो चूँकि थोड़ी सी साइंटिफिक बेसिस को पढ़ें, लेकिन असल क्या चीज़ है कि बेसिकली खुद जिस मदर से हम ताल्लुक़ रखते हैं और जिस खालिक ने हमें खल किया है, उस खालिक के बताए हुए कवानीन, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं। कि जो कुछ साइंटिफिक चीज़ें हैं वो ये हैं, अब इस्लाम देखें क्या कह रहा है, कोरिलेट करें, अप्लाई, इसका एक हाइब्रिड मॉडल बनाएं, घर पे अप्लाई करें, तब वो मुआशरा, वो अफराद, वो कौम तश्कील पाती है, फिर जो नासिर इमाम के तौर पर उभरती है फिर, ठीक है। तो ये सब जिम्मेदारी हमारी, आपकी, सबकी है, बाइसत कौम, बाइसत मिल्लत, कि हम इन चीज़ों पे काम करें, फोकस करें, अवेयर करें। जो सेशन रखा गया वो भी इसीलिए कि बेसिकली एक जिम्मेदारी महसूस की जा रही है मुआशरे के अंदर, ये लैग कर रही है कि हम तरबियत के फुकदान से उस स्टेज पे आ चुके हैं कि जहाँ पर अब कम अज़ कम एक जनरेशन गैप आ चुका है। अब आप और हम जिस मरहले पर हैं, जो पिछले 20-22 साल से कोताहियाँ हुई हैं तरबियत के नामीन से, एक पूरी नस्ल अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगली नस्ल, लेकिन उसके लिए अब से उस तरबियती नवीन पे काम करना होगा, बड़ों को भी, बूढ़ों को भी, इदारों को भी, तब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाली जनरेशन वो जनरेशन हो जो तरबियत याफ्ता जनरेशन। लेकिन उसके लिए जो बड़े होंगे इदारे में, खुद सबसे पहले मरहले पर अपनी तरबियत साजी करनी होगी। चलें जी, वापस आते हैं हम इन्फेंट का माइलस्टोन इस एज में, जबकि वो 1 साल तक है, तो क्या है इस एज के अंदर, पहले आप चंद महीने शुरू के निकाल दें, जारी बात है, इसमें ना वो बोल सकता है, ना वो हेल्थ चल फिर सकता है। क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो सबसे इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इस फेस का है, स्माइलिंग है, मुस्कुराना, ठीक है ना। इसी आपने क्या, बच्चा सोते हुए मुस्कुराता है, जिसको हदीस कहती है कि बेसिकली क्योंकि फरिश्ते खिलाते हैं उसको, तो लिहाजा वो मुस्कुराता है। कॉपी दिस सुन्नत ऑफ चाइल्ड, कुछ चीज़ें जो इस्लाम ने बयान की कि बच्चों की सुन्नत अपनाऊँ। बी फातिमा की हदीस है जिसमें 4 चीज़ें बयान की हैं कि मैं बच्चों को क्यों पसंद करती हूँ। याद है किसी को वो हदीस जिसमें बीवी ने बयान फरमाया है कि क्यों पसंद करती हूँ, कौन सी हैबिट्स हैं? बीवी कहती है कि अभी खेलते हैं, अभी लड़ते हैं और भूल जाते हैं। नहीं, लड़ाई अगर की और हम क्या करते हैं, तो जुमला कहा था 25 साल तक याद है, तुमने फला मौके पर ही कहा था। बीवी तरबियत को अनुमान दे रही कि भाई बच्चों से कम अज़ कम ये तो सीख लो। तो बच्चे भी तरबियत साज हैं हमारे लिए, लेकिन अगर उस निगाह से देखेंगे हम बच्चों को, ठीक है, क्या करते हैं ये, अभी बनाते हैं और अभी बिगाड़ देते हैं। देखो मतलब आप पिकनिक पे ले जाएं, वो क्या करेगा बच्चे का, छोटे बच्चे जिसके हमको होता है कि वो मिट्टी से खेलते हैं, सब घर वर बनाने की कोशिश करें, यहाँ कंप्लीट हो, क्या करते हैं, क्या अनुमान दे रही है, भाई ये दुनिया रहने के लिए नहीं है, माल जमा करने के लिए नहीं है, प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टीज ले लेके अर्निंग, वो उसके पास रहने के लिए नहीं है, तुम्हारे 10-10 फ्लैट है, तो अभी जिसने खुद बनाया और यूं बिगाड़ दिया यानी इसको जैसे उसके लिए कोई चीज ही नहीं थी, बराबर है। तो अगर माल आए और चले भी जाए तो टेंशन, फलसफा बयान किया बीबी ने, जिसमें बहुत सारे अगर हम इसकी नफ्सियाती तहलील करें बउनवान साइकोलॉजी तो बहुत सारे अनवीन हैं इस एक एक पैरामीटर के अंदर, ठीक है। तो तुम्हारे तो मौजूद वो नहीं है। फिर इसी तरह बीवी कहती है कि जिस तरह वो अभी अभी साथ खेलते हैं लड़ते हैं और फिर अभी बनाते हैं और वो भूल जाते हैं, फिर देर तक नाराज नहीं रहते। हम क्या करते हैं कई कई दिन मियाँ बीवी गुफ्तगू ही नहीं कर रहे, वो बेड पे इस तरफ मुंह करके और वो उस तरफ मुंह करके, कहीं तो खाना भी नहीं दे रहे। जब खाना दिया रहा है किस तरह दिया रहा है, टेबल पर रखा हुआ है, कुछ बोला नहीं जा रहा। उन्हें पता है टेबल पर रखा हुआ है, टोस्ट पकड़ा, चाय पकड़ी और निकल गए, सही। क्योंकि इन इन पहलुओं में तवज्जो देनी हमने, जो आइमा के फरामीन हैं वो हमारे लिए बेहतरीन गाइडलाइंस हैं तरबियत के अनामीन के अतबार से, मार्फत के लिए, आखरत के लिए। हम चूंकि सिर्फ जो बैठते हैं वो थोड़ा सा वाह करके सुन के चले जाते हैं और समझते हैं कि अदादारी का हक अदा हो गया भारत। तो इस एज में सबसे उनवान इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा बेसिकली स्माइल करता है, तो आपने इन रिएक्शन स्माइल देना उसको। क्यों? उसके सामने क्या है, आप हैं, आप जो फेस देंगे वही फेस का फिंगरप्रिंट उसके ब्रेन में क्या होगा, इम्पोज हो जाएगा। अगर उसके सामने इस्माइली अंदाज में, तो वो बच्चा, आपने कहा बास अफराद गुफ्तगू के दौरान मुसलसल उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं इस्माइली रहते हैं। अच्छा, उनको पता भी नहीं, क्योंकि वो हैबिट डेवलप हो चुकी है उनकी कि दौरान गुफ्तगू उनका चेहरा कैसा रहता है, इस्माइली रहता है। इसके लॉजिक में जाएंगे, लॉजिक ही मिलेगी कि घर के अंदर वालदैन ने बचपने के अंदर जो एक्सप्रेशन रखा है उनके साथ इस्माइली एक्सप्रेशन रखा। और कुछ अफराद बोलते ही चीखने वाले अंदाज में बोलते, दिस इज माई स्टाइल, ऐसा ही है, बोले लड़ थोड़ी रहा हूं, ये मेरा स्टाइल है। तो सवाल करें स्टाइल क्यों हुआ, स्टाइल इसलिए हुआ कि घर के अंदर जब चीखम पुकार लड़ाई झगड़ा तो वही पैटर्न सेट हो जाएगा उसका भी, तो इसलिए वो कहता है पलट के ये मेरा स्टाइल है, क्योंकि जारी बात है वो उसके लिए अब क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। तो पहली चीज जो माइल स्टोन इस एज का है कि आपने स्माइल करना है और वेविंग, तो टू माइल स्टोन स्माइलिंग एंड वेविंग, क्या बॉडी जो आपकी यानी हाथ हैं जो फेस है उसके जरिए आप, क्योंकि अभी जारी बात है वो बोल नहीं सकता, वो सिर्फ हाथ पांव हिलाता है, फेशियल एक्सप्रेशन देता है, भूख लगती है, पेन में होता है, नैपकिन चेंज करनी है तो होएगा, वरना वो या तो नॉर्मल होगा या फिर स्माइल कर देगा। स्माइल करें, स्माइल का रिप्लाई स्माइल से देना है। उसके साथ बैठ के आपने जो है वो लिटिल बिट बॉडी मूवमेंट शो कर दी है। क्यों? ये जितनी चीजें आप करेंगे उतना तेजी से ब्रेन डेवलप होगा उसका, जितना ज्यादा ब्रेन डेवलप होगा उतना ही उसका आईक्यू लेवल भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो 60 ट्रिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं, 7 ट्रिलियंस न्यूरॉन्स, एंड विद इन इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ जब वो जिन सिनेरियोज, इसलिए बार वेस्ट के अंदर क्योंकि आप उसे मल्टी लैंग्वेज सिखाएं, जब लैंग्वेज सिखाते हैं तो आपके न्यूरॉन्स इस्तेमाल होते हैं, जो न्यूरॉन्स इस्तेमाल हो जाएंगे यानी ब्रेन के खलिए इस्तेमाल हो जाएंगे वो उसके सर्किट का पार्ट रहेंगे, वरना स्टडीज सेज ये रिड्यूस होते हैं विद इन 7 ईयर्स। अब यहाँ से फिर रसूल की हदीस में हमें घूमना पड़ेगा कि पहले 7 साल तक बच्चों को बादशाह की तरह यानी जो क्या वो करो, ठीक है ना, ये हमने क्लैरिफाई किया था जो करे से मुराद क्या क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो वो एडल्ट में हमने क्या बात की थी, अगर लास्ट टाइम पूछा था हमने, जो हमारे ब्रदर ने जवाब दिया था प्रिंसिपल साहब ने कि कितने इनके अलावा बाकी लोग अब जवाब देंगे कितने अडल्ट न्यूरॉन्स हैं ह्यूमन ब्रेन के अंदर, यानी खलिए कितने आपके इंसानी दिमाग में, कितने बिलियन, कितने 1 बिलियन कह रहे हैं, और इससे तो बहुत ज्यादा ऑटिस्टिक चाइल्ड में होते हैं, कितने होते हैं, ये लास्ट वीक बताया था आपको, आवाज आई यहां से सही दुरुस्त, 100 बिलियन, और हमने बोला जब पैदा होता कितने 7 ट्रिलियन 7 खरब, کیوں ختم ہوئے ہیں؟ استعمال نہیں کیا. نعمت کو استعمال نہیں کرو گے نعمت چھن جاتی. صلاحیت دی تھی بچے کو وہ ماحول پرورش انداز میں کرو نشو نما پائے. درخت نشو نما پاتا ہے نا, بیج کتنا سا ہوتا ہے, جب وہ تنا پر درخت بنتا ہے تو آپ ہلا سکتے ہیں پکڑ کے تنا اس کا, وہ تنا اتنا بڑا ہو اگر آپ اس کو امبریس کرنا چاہیں یو کین ناٹ امبریس. بعض درخت کے تنے اتنے گھنے ہوتے ہیں, نکلا کہاں سے تھا, اتنا سا بیج تھا. تو جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے دماغ کے اندر تو ایک نہیں دو نہیں ٹریلینز میں وہ خلیے دیے, ان کو استعمال کروائیں. کیسے استعمال کرائیں؟ پازیٹیو چیزوں کے ساتھ, کنسٹرکٹیو چیزوں کے ساتھ, انالیٹیکل چیزوں کے ساتھ, سازگار ماحول کے ساتھ, تاکہ وہ نشو نما پائے. نشو نما پائے تو کیا بنے؟ کبھی متحری کی صورت میں سامنا ہے, کبھی نصر اللہ کی صورت میں سامنا ہے, کبھی قاسم سلیمانی کی صورت میں سامنے آئے, کہ جن کے دماغی پلان کے اہداف ہمارے سامنے ہیں کہ کس صورت میں سامنے ہے, ٹنل بن گئی پتہ تک نہیں لگا. کم از کم ایسٹیمیٹ یہ کم از کم کہ 2700 کلومیٹر ہے شہر کے نیچے, 2700 کلومیٹر سمجھتے ہیں. یہاں سے لاہور کا ڈسٹینس کتنا ہے؟ 1200 سے لے کے 1450 کلومیٹر ہے لاہور, سمجھ رہے ہیں؟ اور ٹنل کی منیمم جو ایسٹیمیٹس ہیں, منیمم بتا رہا ہوں, اوور 4000 سم تھنگ بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن 2700 تو منیمم ہے. 2700 کلومیٹر ٹنل بن کے پتہ, ٹنل کا مراد یہ نہیں کہ آپ نہیں کرے, جب نیچے ٹنل میں جاتے ہیں نا تو آپ کو پورا ہینگ کر کے نیچے جانا پڑتا ہے 30 فٹ, تاکہ اگر بمبارڈمنٹ ہو نیچے مسئلہ نہ ہو. کیسے بن گئی؟ یہ تھا کہ پتہ بھی نہ لگے, کیونکہ اوپر مانیٹرنگ سیٹلائٹس ہیں, کوئی ایکٹیویٹی ہوگی فوراً پتہ لگے گی, تو سارا نیچے. ابھی جو بمبارڈمنٹ ہوئی ہے کتنے لوگ مرے تھے اس میں؟ ٹوٹل جو بمبارڈمنٹ جب کی تھی نا, جسے ہم کارپیٹنگ کہتے ہیں, تو 600-700 لوگ مرے تھے اس میں صرف. غزہ دنیا کے ان سٹیز میں شامل ہے جو کہ ڈینسلی پاپولیٹڈ سٹیز ہیں, جیسے کراچی کے اندر آپ اورنگی ٹاؤن چلے جائیں, اتنا یعنی گلیاں اتنی سی ہیں, اتنی سی کیا مطلب, اتنے لوگ رہتے ہیں, جگہ کم ہے, یعنی خالی اسپیس, اس کو ہم کہتے ہیں ڈینسلی پاپولیشن, کہ لیونگ اسپیس از لمیٹیڈ بٹ پاپولیشن از مور. تو غزہ اتنی کوآپریٹنگ کر دی, عمارتیں بندے 600 مارے, کچھ سوچا نہیں کیوں, کہاں گئے وہ, کہاں تھے وہ, کچھ تو بارڈر پہ پہنچ چکے تھے مصر کے, جہاں انٹرنس نہیں مل رہی, باقی لوگ یہاں تھے. کتنے انسانوں کو سیف کیا ہے ایک برین نے, کیسے؟ پلاننگ. پلاننگ کیسے ہوئی؟ دماغ چلانا, دماغ کیسے ڈیولپ ہوا, اس میں تربیت ہوئی ہوگی پہلے. تو آپ اپنا رول سمجھیں کہ آپ معاشرے میں کیا پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. بل گیٹس, ایلان ماسک, مرضی آپ, لیکن اگر آپ کا ایم بڑا ہو تو ہمیشہ بڑے اہداف کے لیے بڑا سوچنا پڑتا ہے. اس لیے یاد رکھیں فلسفہ کہ اف یو وانٹ ٹو ایم ہائر یو ہیو ٹو بلڈ اے لیڈرشپ کوالٹیز. دا لیڈرشپ کوالٹیز ہیز ڈفرنٹ ایٹریبیوٹس. ون آف دا ویری کور فنڈامنٹل تھنگ ان دا لیڈرشپ کوالٹیز از دا ریزیلینس. سو ڈو یو نو دا میننگ آف ریزیلینس, the type of resilience you should instill these resilience in your child. The resilience are different types. The commonly we know it, social resilience, emotional resilience, but we don't know about the religious resilience, RR. So if you want to create a child with the aim of a leadership that can serve your mom, then you should instill in him the religious resilience which is lacking in our idaras here. جو لڑتے ہیں آپس میں, ٹرسٹ اینڈ ٹرسٹ, انجمن اینڈ انجمن, دے ڈونٹ ہیو اے ریلیجیس ریزیلینس. ورک آن دیز ایٹریبیوٹس خود کے اندر بھی, بچوں کے اندر بھی. لیکن ہمیں جب علم ہی نہیں ہوگا تو خود پہ کیسے کام کریں گے؟ پھر ہم بچوں کا مرحلہ اس کے بعد کا بیدار ہو جائیں. ان چیزوں کو پہلے سمجھیں کہ کیا چیزیں ہیں یہ, کیوں حیات کے اندر, یہ حیات کوئی معمولی چیز تھوڑی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو جو دی ہے یہ معمولی چیز تھوڑی ہے. پھر آپ کو منسلک کیا اس مکتب کے ساتھ, جو مکتب اہل بیت ہے اس کا ہدف فلسفہ अदा फलसफा हमारा क्या आजकल कि बिजली का बिल पे हो जाए, घर का किराया पे हो जाए, बच्चे की फीस पे हो जाए, ये हदफ चल रहा है। जब हदफ ये रखें फिर एम कर रहे हैं कि इमाम जमाने के लश्कर में जाना है। तो आपसे बात की कि जब बड़ा हदफ हो उसके लिए तैयारी बड़ी होती है, उसी के लिए मेहनत उसी लेवल की होती है, उसके लिए उसी लेवल की कुर्बानियाँ देनी होती हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, तब जाके चीज़ें डेवलप होती हैं। अगर पढ़ना है कैसे लाइफ होनी चाहिए, गो एंड रीड अबाउट वेरियस शहदाज। एक रिकमेंड कर रहा हूँ अब क्योंकि उर्दू में इसकी मौजूद है, अब्दुल हुसैन भूंसी। कितनी जगह जॉब छोड़ी सिर्फ इसलिए कि एक हराम गलत काम नहीं करना। फिर जब मरला आता है, अब इतनी बहुत सारी चीजें जब जंग चलती है तो जिस विंग की कमांड करता है वो सोल्जर्स कहते हैं कभी कभी रुक जाता है, आगे गोले पढ़ ले रुक जाता है, आंखें बंद खामोश नो जवाब, पूछ रहे हैं भाई क्या करें, बड़े दाएं बाएं राइट कर, चल मिनट फिर आवाज आती है स्ट्रेट 10 कदम बाएं, 12 कदम, 13 कदम बाद रुक जाओ। हम बोलते हैं क्या है ये, अंधेरा नजर आ नहीं रहा, बोले इसलिए कदम। पूछा उससे क्या, कहले भाई अंधेरा है मुझे क्या पता क्या है, मैं तो बीबी फातिमा से तवस्सुल करता हूँ, बताएं आपके राह में निकले, आगे अंधेरा नजर आ नहीं रहा, सामने पता है बॉर्डर है, हमें क्या पता माइंस कहाँ है। कह रहे जहां पर हम रुकते थे उसके आगे जो पता ना कि इतने आम उड़े यहाँ रुक जाओ अगले माइन उड़े। फिर ये होता है आराम से जब बचाएंगे तो फिर इर्तबात होता है, जो हमने लास्ट वीक बात की थी कनेक्टिविटी की, कनेक्शन क्यों नहीं होते हमारा खुदा के साथ मार्फत के, उसमें कुछ हाई रुकावटें हैं, उसमें आराम से बचना है। तो अगर आराम से बचेंगे तो फिर ये होगा, जब तवसुल करेंगे तो फिर डायरेक्ट गाइडेंस आती है, ये करो इतनी स्पेसिफिक है, इतने कदम दाएं बाएं और इतनी एक्यूरेसी के साथ, ये होता है। अक्सर मुशाहदात बताएं उसने ना, तो कह रहे मैं देखना चाहता था मोर्चा कहाँ पर है, जो मैपिंग हमने की उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि हम सहरा में, ये मुझे यकीन हो रहा है कि हम क्योंकि सहरा है, कोई इंडिकेटर तो है नहीं, हम बात करें 80s की, कोई GPS GPS तो है नहीं साथ में, हम लगा के देख लें। तो कह रहे हैं आप टीम, मेरे टीम की भी जिम्मेदारी आगे महाज। तो जब मैं फंस जाता था तो फिर इंतबात कर, लेकिन अचानक ऐसा होता कि यूँ रोशनी आ जाती, मुझे सब नजर आने शुरू हो जाता, कहाँ खड़ा हूँ, इशारा होता था कि इस तरफ, ये फिर ये होता है। तो अब्दुल हुसैन भूंसी, बे रे वाओ नून सीन छोटी है, उर्दू में मौजूद है, जाके पढ़ें शहीद के बारे में, कैसे जिंदगी गुजारी है, किस तरह की कठिन लाइफ थी, क्यों जॉब मल्टीपल जगह पर छोड़ी है, इसी लेके हराम कहीं रिश्वत कहीं ये सब छोड़ दी ताकि हराम का एक लुकमा ना आए, सब चीज़ें बारह खैर उनवान है। तो टोटल का आपको जो पहला एक साल का है कि आपने विविंग एंड बेसिकली स्माइलिंग इमाइल स्टोन है बच्चे के साथ, आपने इस एज में ये चीज़ करनी है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ी सी टिप्स के तौर पे ये है कि सबसे पहले बच्चा बार बार डिस्कम्फर्ट होता है तो बच्चे का रोना माँ को पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चा उस वक्त भी रोएगा कि जब वो भूख में, उस वक्त भी रोएगा जब उसको पैम्पर चेंज करना है, उस वक्त भी रोएगा वो किसी पेन में तकलीफ में हो, कॉलिक पेन कॉमन होती है बच्चों के अंदर। तो एक मदर के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो सेंस कर सके रोने का कि बच्चा अगर रो रहा है तो किस वजह से रो रहा है, ठीक है। और अल्लाह ने सलाहियत रखी है, इतना सेंस फादर के मुकाबले मदर में बहुत ज़्यादा है कि बच्चे के इस एंगल को सेंस कर सकती है, लेकिन कब, अभी हम एक पॉइंट बोलेंगे, ये सब उस वक्त मुमकिन जब खुद भी सही स्टेट ऑफ माइंड में हो, देवी तो जज करेंगे। डॉक्टर का थर्मामीटर ही अगर कैलिब्रेटेड यानी आउट ऑफ ऑर्डर हो, सही कैलिब्रेशन ना दे, ब्लड प्रेशर का आले अगर कैलिब्रेटेड ना हो तो जो रीडिंग देगा क्या देगा, गलत देगा। तो उस तरह आपके अगर बच्चे के डिफरेंट हिडन स्किल और एंगल्स को जज करना है तो उसके लिए आपका ये कम अज कम स्ट्रेस एंजाइटी से दूर होना चाहिए, तब आप सेंस कर सकेंगे, राइट सेंस कर सकेंगे कि बच्चा क्या मांग रहा है। बच्चा रो इसलिए रहा है कि बेसिकली उसकी नैपकिन चेंज करनी है, आपने फीडर भी पिला दी, आपने उसको टहला भी दिया, लेकिन सेंस करना पड़ेगा व्हाई ही इज क्राइंग, वीपिंग क्यों कर रहा है, ठीक है। तो पहली चीज़ है कि आपने बच्चे को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। दूसरी चीज़ है कि आपको जहन में होनी चाहिए कि बेसिकली बाज दफ़ा यानी 9-10 महीने के बच्चे अल्फाज टूटे फूटे अल्फाज नहीं सेंस नहीं होता वो अदा करना शुरू करते हैं। ठीक है, जब वो अल्फाज अदा करें उन अल्फाज को आप रिपीट करें, ये माइलस्टोन है कि जो अल्फाज बच्चा अदा करता है उस अल्फाज को आप भी वैसे ही अदा करें। इसके दो इम्पैक्ट होते हैं। पहला इम्पैक्ट उसकी लैंग्वेज स्किल्स की जो सेंटर्स ब्रेन में हैं वो कंसोलिडेट होने लगते हैं जल्दी। देखें नहीं, बाज बच्चे देर में बोलते हैं और बाज बच्चे जल्दी बोलना शुरू करते हैं। बाज बच्चे देर से चलते हैं, बाज बच्चे जल्दी चलते हैं। रीज़न क्या हो सकते हैं? बेताश रीज़न है उनमें से एक रीज़न, ये फैक्टर भी है। हम ये नहीं कह सिर्फ यही फैक्टर है, और फैक्टर्स भी, हम उसकी बात नहीं कर रहे अभी, वो टॉपिक नहीं है। लेकिन एक फैक्टर ये कि वो जिस जगह रहता है उस जगह रहने वाले अफराद कितने रिस्पॉन्सिव हैं। यानी जिस तरह ने बात की थी कि बच्चा क्या है, कॉपी कैट है, जो वालदैन कर रहे हैं वो कॉपी करता है। इस फेज के अंदर आपने कॉपी करनी है उनकी, वो जो आ ऊ ई ऊ कर रहा है वो आप भी करें, वो मुस्कुरा रहा है आप भी मुस्कुराएं, वो यू 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 हाथ हिला रहा है आप भी हाथ हिलाएं इसी तरह। ठीक है, जब बच्चा 6 महीने बाद क्या करता है, करवट लेना शुरू करता है, आप भी बैठ जाए बैठ पे, आप भी करवट लें उसके साथ, आप देखिए कितनी तेजी से बच्चे ग्रो करते हैं, कितना पॉजिटिव माइंड सेट के साथ ऐसे बच्चे जब बिल्ट होंगे, बड़े होंगे, टीनेज पाएंगे, पॉजिटिव एट्रीब्यूट के साथ बिल्ट होते हैं। क्योंकि ये हमारे यहाँ माशरे में नहीं है, वेस्ट में दिस इज वेरी कॉमन। ठीक है, वेस्ट में जो लोग रहे हैं उन्हें आइडिया इन चीज़ों का कि वहां पर पेरेंट्स बच्चों के साथ बच्चा बनते हैं, लिटरली बच्चा बनते हैं। ठीक है ना, मट्टी में खेल रहा है तो मट्टी में बैठ के उसके साथ खेलेंगे, हमारे यहाँ क्या करेंगे, यूं पकड़ा मट्टी में, कपड़े गंदे हो जाएंगे, हम खुद नहीं बैठेंगे उसमें। तो ये चीज़ें बच्चे की साइकोलॉजी पे नेगेटिव इमेज क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो जो बच्चा कर रहा है ट्राई टू इमिटेट करें उसे, आप कॉपी करें उस चीज़ को, ताकि बच्चा उस चीज़ को जल्दी अडॉप्ट करेगा, यानी जल्दी ब्रेन सर्किट उसके कंसोलिडेट होंगे, वो जल्दी जो है वो आईक्यू बिल्ड करेगा और फिर जल्दी माशरे के अंदर आईक्यू के साथ अपने काम अंजाम देने के काबिल हो जा सकता है। ठीक है, फिर साउंड्स, बाज़ दफ़ा जो है वो बच्चे जो है वो ऊँआ ऊँआ कर रहे हैं, तो ये ऊँआ नहीं है, इनकी जो वोकल कार्ड होती है बेसिकली ये बिल्ड हो रही होती है, स्ट्रांग हो रही होती है ताकि वर्ड्स को अदा करने के, तो जो साउंड निकालता है आप हर साउंड के साथ एक एडिशनल साउंड भी उसको फेमिलराइज करवाएं, इससे क्या होगा वो जल्दी जो है वो बोलना शुरू करेगा। दो अलग चीज़ें हैं, एक दफ़ा जो आपके स्पीच सेंटर हैं, स्पीच में क्या होता है, वर्ड्स होते हैं, जो कॉम्प्रिहेंशन सेंटर है ब्रेन का वो अलग है, जिसे हम विजडम सेंटर कहते हैं, जो आवाज़ निकलती है आपकी बेसिकली फेफड़ों से जो हवा ऊपर आती है, यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स हैं, इसकी मसल्स को स्ट्रांग होना है। जिस तरह आप अडल्ट होते हैं जाके खवातीन 9 साल और मर्द 15 साल में, इसके क्या माने, अब ये इस काबिल हो गए, तो आप जब शुरू में बच्चे हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो बोल सके, क्यों कि इसके वोकल कॉर्ड अभी इतने उसकी मसल वीक हैं कि वो बेसिकली अल्फाज की अदायगी के लिए ही जब हवा उसके ऊपर आती है तो वो उस अंदाज में ही नहीं निकल पाती कि जो अल्फाज के अंदर तब्दील हो, क्योंकि वोकल कॉर्ड की मसल्स वीक हैं। ये स्ट्रॉन्ग कैसे होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता नेचर ने सिस्टम ऐसे रखा है कि जो आवाज़ें जो निकालता है इससे वो मसल आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है। तो आप जब एक साउंड के साथ जो खुद बच्चे अपना प्रोड्यूस कर रहा है उससे सिमिलर एडिशनल साउंड खुद प्रोड्यूस करें, हर उसने बोला ऊ आप उसके बाद हाँ, ये जब उसके समातों में जाएगी तो वो भी क्या करेगा, वो भी सीधा। अच्छा, ये आपने कैसे करना है, ये आपने सुकून के साथ उसके फेस के सामने लिपसिंग कर, यानी आपके लिप्स, क्योंकि आप देखें जब बच्चा बोलता है आप गौर करिएगा उसके लिप्स की मूवमेंट, बाकायदा आपको यहाँ पर उसकी सारी जो मसल्स हैं उसकी मूवमेंट भी क्लियर नज़र आ रही होगी, तो आप फेशियल एक्सप्रेशन के साथ, ताकि वो बच्चा उस फेशियल एक्सप्रेशन को कॉपी करने के लिए उस साउंड को जो सुनिए अपने जो फिक्स साउंड है उससे हट के कोशिश करें, इससे जल्दी उसकी वोकलाइजेशन भी डेवलप होने शुरू हो जाएगी और ब्रेन के सेंटर्स भी। ठीक है, एंड देन इस वेरी इंपॉर्टेंट प्रूवन स्टडीज, एवरी सिंगल टच मेक्स अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड। ठीक है, कुछ स्टडीज कहते हैं कि एक दिन के अंदर जो ये लम्स हैं टू टच योर बेबी विद द स्किन विद द हैंड्स, ठीक है, कम से कम 20 मिनट होना चाहिए, कम से कम। अच्छा 20 मिनट होने का आप हाथ पकड़े बैठ गए उसका, मतलब एट एन एवरेज 20 मिनट तक आप उसको, जैसे पहले के ज़माने में, इसलिए ये फलसफा शायद उनको तो नहीं पता होगा लेकिन बहरहाल उसकी अफादियत पता हो, तो इसलिए क्या होता था कि जब सलाम करते थे तो पहले जो है वो सर पे हाथ फेरना, इट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव वाइब्स, इट्स प्रोड्यूस एन हार्मोन दैट गिव्स प्लीजेंट, दैट गिव्स अ मूड स्विंग इफेक्ट फ्रॉम अ डाउन लेवल टू अ अप लेवल, ठीक है। एक एक चीज जो आपके यहाँ मुसाफा करना है, फलसफा है इसका, जब आपकी स्किन कोरिया जब इम्ब्रेस करती हैं तो एक हार्मोन निकलता है सेरोटोनिन, ठीक है, जब आप देर तक किसी को एम्ब्रेस करते हैं रिलीजेस अ डोपामिन, ये सारे वो हार्मोन हैं जो आपके मूड को स्टेबलाइज करते हैं, जो आपके अंदर फीलिंग ऑफ वेल बीइंग लेके आते हैं। तो हर चीज की लॉजिक है, तो बच्चे को होल्ड करना, बच्चे को बार बार गले लगाना, ठीक है ना, ये सब चीज़ें जो हैं वो, अब इसमें बाकायदा थेरेपीज हैं, हम जैसे हमने बात की स्माइल, तो इस पर लाफ्टर थेरेपी है बाकायदा, इसमें भी ट्रायल्स मौजूद हैं, बाकायदा कर्डलिंग एंड एम्ब्रेसिंग के ऊपर टेक्निक्स हैं, कितनी देर तक, किस तरह, किस एंगल में, कितनी फोर्स के साथ, ये सब उन लोगों के जो मेंटल डिस्ट्रेस में हैं, जो डिप्रेशन में, ये सब उसका पार्ट है रिहैब के अंदर। तो ये तो फ्री में चीज़ें इस्लाम ने आपको बयान की हुई हैं, भाई आप मुसाफा क्यों करते हैं ईद के बाद, नमाज के बाद, या जब काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं, तो उसके सब पॉजिटिव वाइब्स हैं सारे, क्योंकि साइंस बता रही है कि इसमें ये हार्मोन निकलता है और ये, ठीक है। तो आप बच्चे को इम्प्रेस करें, उसकी बॉडी को टच करें, ठीक है, ये सब चीज़ें, क्यों इस्लाम ने कहा है कि एक बोसा जब हर बोसे के ऊपर अजर है, हदीस के अंदर है ये हदीस कि हर बोसे के ऊपर अजर, ऊपर इतना इतना अजर, क्यों? तो इस्लाम तो आपको मोटिवेट कर रहा है, इसके पीछे भी फलसफे हैं सारे, ठीक है। उन फैमिलीज के अंदर के जिनके किड्स डिप्रेशन का शिकार हैं, जो हम मुख्तलिफ इवोल्यूशन करते हैं तो पूछते हैं, तो वो है कि कोई अपने वाल मतलब एक ही घर में रहते हैं, दो दो हफ्ते तीन तीन हफ्ते मिलते नहीं, रिलेट कर लें, जब मिल नहीं रहे तो क्या हाथ मिलाना, क्या गले लगना, क्या बोसा, समझ रहे हैं आप क्या निकल रहा है? 12 साल की उम्र, 13, बच्चा डिप्रेशन में शिकार हो चुका है, सब चीज़ें मयसर हैं, हम बात कर रहे हैं जो पोश एरियाज, सब चीज़ें मयसर, यानी मटेरियलिस्टिकली कोई इशू नहीं है, ना पैसे का, ना रियायत, ये वो एक से एक चीज़ है, आला खाना, ये सब, हालत क्या है, मेंटली डिप्रेशन है, एज कितने जनाब, 13 साल हो, 14 साल हो। अभी एक मेडिकल स्टूडेंट का केस डील कर रहे हैं, जो खुद रहती डिफेंस में, नौबत ही आ गई खुदकशी की, इतना सीवियर डिप्रेशन चल रहा, अंदाजा लगाया, तो मामला हैं सोसाइटी के हमारे, ठीक है जनाब। तो हर चीज़ का इम्पैक्ट है, बच्चे को होल्ड करना, बच्चे को जो है वो गले लगाना, सब चीज़ें, इससे इसके अंदर फीलिंग ऑफ केयरनेस आती है, ठीक है। तो जितना बाल लोग बहुत केयरिंग होते हैं, कुछ लोग मिल्लत के ऐसे हैं कि जो अपनी परेशानी, अपनी आसाइश आराम को छोड़ के दूसरों के लिए फ़ौरन पता लगा वहाँ उनका मसला पहुँच गया, क्यों, सवाल कहाँ से ये चीज़, कोई जीन्स के अंदर पैदा की गई थी, जो देखा उसने माहौल अपने घर के अंदर जो बिल्ड करवाएगा वो फॉलो कर रहा है उसको, कि उसके वालिद वालदा भी जहाँ किसी की परेशानी से नहीं पहुँच गया उसको हल करने के लिए, तो उसके अंदर भी आ गए कि वो जनाब रात को किसी ने कॉल की यार वो ब्लड देने पहुँच, अब वही नहीं बोलेगा सुबह मैंने ऑफिस में जाने, बोला ठीक है इंशाल्लाह मैं पहुँच, क्यों, उसके अंदर ये सेंस डेवलप बचपने से हुआ था कि केयर करनी है, क्यों, तो उसकी भी केयर हुई है, तो जो आप दे रहे हैं वो रिबाउंड करेगा यंग एज में जाके, ठीक है, रिस्पेक्ट देंगे, क्यों आज वालदा ना के बोलते बात नहीं सुनता, ये बाप लोग के लिए क्यों कहते हैं कि वो रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट आएगी, वो नौकर थोड़ी है कि हुक्म चलाऊं, ठीक है, वालदैन की सबसे ज़्यादा राइट्स हैं उसका हुक्म मानने का, ये उससे पूछा जाएगा क्यों नहीं माना, लेकिन आपके एंड की कोताही है कि आपने कोई डिक्टेटर बन के सिर्फ ऑर्डरिंग मोड में नहीं रहना, एक होता है कमांडिंग मोड, एक होता है डिमांडिंग मोड, एक होता है रियलिस्टिक मोड, फर्क है तीनों में, इस फर्क को समझें, ना तो ऑलवेज कमांडिंग रहें ना तो ऑलवेज डिमांडिंग, लिटिल बिट एज के एतबार से कभी कमांडिंग कभी डिमांडिंग, एंड देन रियलिस्टिक मेजर मोड आपको रियलिस्टिक मोड होना चाहिए, फर्क बताने के लिए कि क्या रियलिस्टिक है और क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। एक मिसाल समझा लेते हैं, एक बार मिलकर शुरुआत पढ़ें आप लोग। कश्ती है, तीन टाइप्स के अफराद, एक वो जो पॉजिटिव सोचते हैं नेगेटिव, पैसे में से ऑप्टिमिस्टिक एंड रियलिस्टिक का डिफरेंस बता रहा हूँ आपको। सर तूफान आया कश्ती यूं, मुझे एक बंदा कहने लगा क्यों बैठ गया इसमें, मुझसे ना ही टिकट लेता हो, बेगम मना भी कर रही थी कि मत जाओ आज, पता नहीं बचूंगा नहीं बचूंगा, वन थॉट। सेकंड दूसरा, भाई परेशान ना हो इंशाल्लाह आते रहते हैं, मौसम ख़राब है, थोड़ी देर में वेदर सही हो जाएगा, कश्ती सही हो जाएगी, पहुंच जाएंगे मंजिल पर। सेकंड थॉट। तीसरा उठता है, चेक करता है विंड डायरेक्शन, तो तूफान के अगेंस्ट जाके बादबान का रुख तब्दील कर देता है, कश्ती थोड़ी देर में निकल जाती है। तो पैसिमिस्ट होते हैं वो सिर्फ यही करते हैं, चीखमदार ये वो, बच्चा ये क्यों कर रहा है, ये फना फना, नेगेटिव थॉट्स। पढ़ना हो जाएगा सही है ठीक है खैर है, अमली इकदाम कोई नहीं कर रहा। रियलिस्टिक वो होता है जो सोल्यूशन को सुन के आइडेंटिफाई करके ही टेक द प्रैक्टिकल स्टेप्स, देयर इज अ रियलिस्टिक अप्रोच। तो रियलिस्ट हम जिस माशरे में उसके अंदर रियलिज्म को फॉलो करेंगे तो हम इस जो जनरेशन है इससे तरबियत याफ्ता बना सकते हैं, वरना ये जनरेशन भी आज से जैसे हमने बात की एक जनरेशन हम मिस कर चुके हैं, इसको मिस ना करें जो अभी बैठे हुए इतने इतने से, ये हमें करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पहले अपने ऊपर से अप्लाई करना। तो रियलिज्म रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चलेंगे तो चीज़ें मूव फॉरवर्ड होंगी पॉजिटिव वे में, अदरवाइज एक और जनरेशन का गैप हम क्रिएट करने जा रहे हैं अगर अभी नहीं करें, ठीक है। देन इसी तरह जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बेसिकली जो मुख्तलिफ किस्म के ट्रायल्स होते हैं बाकायदा ये एज डिपेंडेंट होते हैं, तो बच्चे के अंदर इस एज के अंदर अभी जारी बात है उसका एनालिटिक्स वीक होता है, जब वो 3 साल 2 साल का है तो लिटिल बिट एनालिटिकल है, लेकिन 1 ईयर तक उसके अंदर एनालिटिक्स की पावर बहुत ही मिनिमल होती है। तो इसको इस एज के, अब आप जारी बात हम नहीं बता रहे कि भाई क्या है क्योंकि टाइम हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है, वो एन अब हर चीज़ नेट पर है, तो नेट पर जाएँ कि इस एज के अंदर के टॉयस कौन से होने चाहिए, ठीक है, उस एज के टॉयस जो है वो उसको ला के दें ताकि उसके अंदर 1 साल वाली जो उसकी नफ्सियात की सलाहियत है उसके हिसाब से उसकी ग्रूमिंग हो, ठीक है। तो 3 साल वाले बच्चे का टॉय 1 साल वाले बच्चे देंगे वो सिर्फ क्या करेगा, क्योंकि इस एज में बच्चा हर चीज़ मुंह में डालने की कोशिश करता है, तो इसलिए बाकायदा लिखा होता है बाहर के टॉयस के ऊपर 3+ ईयर्स, क्योंकि ये क्या करता है चॉकिंग, इससे चॉकिंग के यानी गले में कोई चीज़ फंसा लेता है, कोई भी इस एज के बच्चे को ना तो कोई शार्प चीज़ दी जाती है ना कोई ऐसे चीज़ दी जाती है कि जो बेसिकली चॉकिंग कर सके, यानी ऐसे साइज़ हो कि जो उसके हलक में जा सके, ये मना है, ठीक है ना। और इसलिए अक्सर कैसे कैसे जाता हूँ उसमें बाद कॉइन निकल लिया, ठीक है, वो जो मोतियों वाले हार होते हैं अम्मा के बच्चे नहीं उधारी बता, बच्चा छोट खींचते हार टूट गया, उसने पता कर यहाँ वहाँ गिर गया था, अम्मा ने वैसे साफ कर दिया, बैठ से नीचे गिर गया था, बच्चे ने उठाया वो और फंस गए, वो लेके भाग गए जनाब सांस नहीं आ रही। तो ये सब जिम्मेदारी कब होगी, यू शुड कीप एन आई ऑन अ चाइल्ड, ये कब होगा जब आप खुद भी तो हेल्थ, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें ताकि आप चीज़ों को वो कर सकें। नेक्स्ट फेज बेसिकली अभी हमने जो बात की है टिप्स और माइलस्टोन्स की, वो जो 1 साल तक के बच्चे थे, हम बात करें टॉडलर एज की, टॉडलर एज के अंदर जो हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, बहरहाल अभी हम बात कर रहे हैं सेकेंड ईयर यानी बच्चा 1 से लेके 2 साल के दरमियान का है, इसके अंदर का डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या है बेसिकली, इसके अंदर जो है वो इस फेज में बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ यानी अब जारी बात है थोड़ा सा जो चाइल्ड ग्रोथ होती है फीमेल बेबी एंड मेल बेबी की थोड़ी सी डिफरेंट है, तो फीमेल लिटिल बिट जल्दी चलना शुरू करती है और जल्दी बोलना शुरू करती है, इतना एवरेज बात कर रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा भाई योर चाइल्ड इज मेल और फीमेल, मरला वहाँ आ जाता है कि जब ट्विंस हो गए या ट्रिपलेट्स हो गए, अल्लाह ताला ने आपको ज़्यादा करम किया और ट्विंस जो है वो हो गए और ट्विन में से एक मेल है और एक फीमेल है, तो इधर जो है थोड़ा सा मदर के लिए जिसे कहना चाहिए कि ज़्यादा मेहनत दरकार, ज़्यादा पेशेंस दरकार होता है, ठीक है, क्योंकि बाज़ दफ़ा एक बच्चा लेट चलना शुरू कर रहा है, क्योंकि दोनों साथ हुए हैं, एक जल्दी कर रहा है, तो पेरेंट्स जो है वो घबरा जाते हैं कि भाई दोनों तो साथ हुए हैं, ये क्या मसला है। एक बच्चा जो आंखों कर रहा है ये तो अभी मुस्कुरा भी नहीं रहा, अब उनके जहन में ना जाने क्या क्या ख्यालात जना लेने लगते हैं। तो पहले तो आप, हमने क्या बात की कि टेंशन जो है वो खुद एक बीमारी है, तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि ग्रोथ जो एक फिनोमेना है, कुछ में स्लो होती है, कुछ में रैपिड होती है। हाँ, अगर वाकई कोई ऐसी चीज़ है कि एक साल हो गए बच्चा रिस्पांस बहुत ही कम करता है, ना मुस्कुरा रहा है, तब आप जाएं और चेक करेंगे भाई ऑटिस्टिक चाइल्ड तो नहीं है, ठीक है, तो फिर आप डॉक्टर से जाएं, डायग्नोज करवाएं तब। लेकिन अगर एक जल्दी शुरू कर रहा है, एक देर में कर रहा है, तो दैट इज़ नॉर्मल, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप बिल्कुल जो है वो जहनी लिहाज से अपने आप को पुरसकून रखें, ताकि बच्चे की परवरिश पर ज़्यादा सही तवज्जा दे सके। तो अब तो सेकंड ईयर जो आपके पास माइलस्टोन होना चाहिए, उसके अंदर फर्स्ट ईयर की जो दो पॉइंट्स हैं उसी की एक्सटेंशन, यानी साउंड्स एंड वर्ड्स। क्योंकि अब बच्चा जब पहले साल में आ जाता है तो ये अल्फाज को प्रॉपर अदा करने के काबिल हो जाता है, क्योंकि अब उसकी वोकल कॉर्ड्स स्ट्रॉन्ग इनफ हो चुकी हैं कि कुछ वर्ड्स को सही प्रोनाउंस कर सके। जैसे अमूमन बच्चा बाबा, मामा, पानी, इस तरह के अल्फाज बासानी, जो कि सिंपल वर्ड्स होते हैं, शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, कंपाउंड वर्ड की एज अभी ये नहीं है, ध्यान में रखिएगा। कंपाउंड वर्ड से मुराद क्या होता है, जो थोड़े से लेंथी वर्ड जो दो अल्फाज मिलके एक अल्फाज बनते हैं। जैसे हम बात करें क्लास रूम, तो क्लास रूम एक कंपाउंड वर्ड है, ठीक है। तो इस चीज में आप सिंपल वर्ड्स, बहुत आसान अल्फाज कि जिनकी वोकलाइजेशन में उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़े, वो अल्फाज उसके सामने जब वो बोले, आप स्ट्रेटेजी वही है, रिपीट स्ट्रेटेजी। वो कहते हैं बाबा, आप भी कहें बाबा। जब ये बहुत ही ज़्यादा जो अल्फाज, कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जो वो रेगुलर बोल रहा होगा, तो जो रेगुलर बोलने वाले अल्फाज हैं उसके साथ आप क्या करें, एडिशनल वर्ड ऐड करें। जब आपका ये सेकंड ईयर एंड हो रहा होगा तो आप कोशिश करें, आपने देखा है कि वो एडिशनल वर्ड को भी पिक करके समझ रहा है, तो उसके साथ सेंटेंस ऐड कर दें, यस आई एम पापा, यस आई एम मामा, ठीक है, पापा की जान जी, मेरी आंखों में ठंडक, वही जुमले जो बीबी ने अदा किए जो आप अरिजी के सामने। तो जब आप ये करेंगे तो तीसरे साल के, अभी हम आगे जाएंगे, तो बहुत तेजी के साथ वो बच्चा रवानी से पूरे सेंटेंस सेंस के साथ बोलना शुरू कर देगा। क्योंकि आप इस फेज के एंड पे, यानी जब सेकंड ईयर के एंड पे आते हैं, तो उसके अंदर एनालिटिक्स के सर्किट डेवलप होना शुरू हो गए हैं, इतने कि वो कलर को आइडेंटिफाई कर सकता है, बेसिक लफ्स को जो वो रूटीन में इस्तेमाल कर रहा है उसके मायने समझता है, यानी उसे पता है। अब ये घर में अगर आठ अफराद है, तो इन आठ अफराद में से अगर चार खवातीन हैं, चार खवातीन में से मेरी मामा ये हैं, मेरे बाबा ये हैं, यानी उसको इतना एनालिटिक्स और सेंस आ जाता है इस एज में कि वो अपनी माँ और फादर को देखने के लिहाज से, कॉम्प्रिहेंशन के लिहाज से समझते हैं। वैसे बाय नेचर, चूँकि बहरल एक और अलग वैसे हम उधर जाएंगे तो फिर वे निकल जाएंगे, बहरल मदर को बच्चा बाय बर्थ जानता है, क्यों, लॉजिक, सवाल किया था इमाम से, जी जनाब बिल्कुल, चूंकि वो बाज़ाहिर दुनिया में तो अब आया है लेकिन वो ऑलरेडी जन्म ले चुका है, उसमें रूह आ चुकी है, वो जिस हिस्से में मौजूद है वो वजूद बेसिकली माँ का वजूद है। अब यहाँ से एक और खूबसूरत बहस निकलती है कि जो आजकल के ज़माने में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और वो जो टेक्निक्स आ रही है क्लोनिंग वगैरह की, इसके मामला क्या निकलेंगे ह्यूमन नेचर पर। अगर हम साइंस से बात नहीं कर रहे, मतलब साइंस से पहले तो अलग है कि अगर आप इस मरहले पर आ जाए कि आपने सब्जियों से, फलों से वो सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके वो सेल बना ली जो मेल के सेल्स होते हैं और फीमेल के, और आपने वो एनवायरनमेंट दे के उसको वहीं पर फर्टिलाइज करा के पूरा ह्यूमन बिल्ड कर लिया, तो अब इसके हलाल ज़्यादा और हराम ज़्यादा का क्या कॉन्सेप्ट होगा। इसके महरम और ना महरम का कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसके विरासत के मामलात क्या होंगे, अगर वो कल को मुश्तहिद बन गया तो इमामत करा सकता है या नहीं करा सकता, इसके निकाह के अहकाम के मामलात क्या होंगे। ठीक है, ये तो शरीयत में आना है। ठीक है, पढ़ना है किसी ने, अगर ये नई बात नहीं है, ये जब क्लोनिंग 70s में डेवलप हुई है और इसके फतावे इमाम खुमैनी की तहरीरुल वसीला के अंदर 1969 के अंदर मौजूद है, और आते होगी जो मुस्तजाबुल मसाइल है उसके अंदर बताया उन्होंने कि क्या अगर ऐसा साइंस तरक्की कर ले और ये हो जाए तो उसके अनुमान ये होंगे। हम तो अभी साइंस की बात कर रहे हैं कि इस शख्स के नफ्सियात पे क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि ये जिस वजूद में रही है वजूद आर्टिफिशियल वजूद है। जो एक्सट्रैक्ट किया गया है इसके खलियों को, सेल्स को, यानी स्पर्म और ओवा को, ये आर्टिफिशियली सोर्स से एक्सट्रैक्टेड है। ठीक है, तो इसके नफ्सियात पे, साइकोलॉजी पे, पर्सनैलिटी पे क्या क्या असरात आ सकते हैं, ये बहस है पूरी। ठीक है, इस्लामी बहस आपको बता दी, इसमें पढ़ना है, तहरीरुल वसीला देख ले, मुस्तजिब मसाइल देख ले, तो सारे जवाब मौजूद हैं। जो क्लोनिंग के जरिए अगर बेबी हो तो उसके शरीय उन्मनात क्या हैं, उसके अंदर तो बात यहाँ तक है। जब साइंस इस तरह की कर ले कि आप दुनिया की रफ्तार बढ़ा दें, दुनिया की रफ्तार कम कर दें, तो फिर नमाज और रोजे के मसाइल क्या होंगे, नहीं समझे, मिसाल दे देता हूँ समझ में आ जाएगा। जब आप मुर्दे को दफन करते हैं तो क्या होना चाहिए, क्या शरीय हुक्म, उसका रुख कहाँ होना चाहिए, चेहरा और सीना, पता है ना, जब दफनाने जाते हैं क्या करते हैं, सीधे लिटाते हैं, कितना ऐसा करवट होना चाहिए किबले की तरफ, सीना और एटलीस्ट सीना और फेस। अब आपने रफ्तार स्पीड अप इतनी कर दी कि सुबह दफन करके आए 24 घंटे बाद जना वो ईट हो गए किबले के, क्या हुक्म हुआ, मर्जे का इंटेलेक्ट समझ रहे कहाँ पर है, 70s की 60s की बात हो रही है, जब कॉन्सेप्ट नहीं थे। तो दीन पढ़ेंगे तो साइंस भी समझ में आ जाएगी, साइंस जहाँ पहुँचती है उससे पहले पहुँच चुके हैं। ठीक है, हमास हिजबुल्ला साइंस ताकत है, साइंस ताकत है, जहाँ पहुँचेंगे उससे पहले आगे प्लान बी, चार प्लान डेवलप चलने लगे, तो इस फोरम पे बोल लेगी कि उसको कोई अलग टॉपिक नहीं है। कहने का मतलब है कि आप अगर इन मफाहिम को दर्क करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये सब कहाँ से लेंगे, आपको कुरान हदीस से लेंगे, कुरान हदीस के अगर गौर करेंगे सारे अलमिल आपके पास हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग सवाल आता है, आप किसी ऐसे सैारे को डिस्कवर कर लें वहाँ हयात हो जाए, जो सैारे क्या हो, प्लेटिनियम का बना है, गोल्ड का बना है, तो आप पता ना ज़मीन में मुतहर के अंदर में से, यानी ज़मीन में पाक करती है, तो आया उस ज़मीन पे चलने से, सात कदम चलने से पाक हो जाएंगे, तो पूरी ज़मीन ही वहाँ मट्टी आई नहीं, तयम्मुम का उनवान क्या बनेगा, उस जगह मट्टी तो आई नहीं। ये सब महाराजन के फतवे हैं उस 50 साल पहले, जहाँ आपका जहन अब भी नहीं जा रहा, अभी बैठे लोगों का नहीं जा रहा, वो फतवे दे चुके हैं, क्योंकि तहरीर है, सही है। जो साइंस में काम करने वाले अफराद हैं किस फील्ड के बैठे हैं, अब बताएं तो आपको मिसाल दूं, उस फील्ड के जो 40 साल 50 जहाँ पर जहन नहीं गया हुआ आपका, जो जेनेटिक्स पे काम कर रहे हैं, जो मॉलिकुलर मेडिसिन पे काम कर रहे हैं, जगहों पे जहाँ पर उनके जहन अभी नहीं गए हैं, वो 50 साल मौजूद हैं महाराजा की तरफ से। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके महाराजाई जो है वो दे चुके हैं। एक मिसाल दूसरी के ज़मीन की रफ्तार आपने स्लो कर दी, इतनी स्लो कर दी कि ज़मीन जो है वो जो अभी 24 घंटे में राउंड मुकम्मल एक दिन होता था, वो जनाब 72 घंटे में हो रहा है। अब रोजे आ जाए 72 घंटे का रोजा, एक कैसा लगेगा भाई, जमीन की रफ्तार सुस्त हो गई, चांद सूरज आना जाना 24 घंटे 72 घंटे पे हो रहा है, फिर रोजे के उनवान क्या होंगे उस मौके पर। पास इतनी कर दी कि जनाब अभी नमाज पढ़ के निकले, आधे घंटे दूसरा टाइम हो गया, फिर एक दिन में जनाब 4 दिन हो रहे हैं, तो इससे मतलब जो पहले आप 24 घंटे में 5 नमाज पढ़ते, 24 घंटे का इतना श्रिंक कर दिया कि आप 24 घंटे में बेसिकली 120 घंटे का ड्यूरेशन कवर हो रहा है, यानी 5 दिन कवर हो रहे हैं। 5 दिन का मतलब है कि आपने अब आपने 25 नमाजें पढ़ ली 24 घंटे के अंदर। अब बंदा जॉब करे या नमाज के लिए भागे, आप लोग के लिए था नहीं, सर्जन क्या करें, जी डॉक्टर साहब सर्जरी कर रहे हैं, ओपन हार्ट सर्जरी चल रही है भाई, 6 घंटे की सर्जरी चल रही है, 6 घंटे में 4 दफ़ा नमाज का टाइम आ रहा है, पेशेंट को देखे वो कहें नमाज छोड़े तो कजा होगी, पेशेंट को छोड़े तो पेशेंट ऊपर जाएगा, क्या करें, कब तक करेगा कजा, उसका तो काम ही सर्जरी करना। कितना इंटरेस्टिंग है दीन। तो दीन से इल्म से इश्क करेंगे तो फिर मजा आएगा, फिर चीज़ें आसान, फिर मफाहिम हकीकतें वाज़ह होंगी। ठीक है जनाब, तो टॉडलर के अंदर स्ट्रेटेजी वही है जो हमने फर्स्ट ईयर की बात की थी, सिवाय इसके कि आपने उन्हें दो पॉइंट्स को और कवर अप करना है, एक्सटेंड करना है, तो इससे उसकी लैंग्वेज सेंटर और कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होना। जी नहीं, बट वो तो हमने इस तनाज़ में बात की थी कि जब शुरू के अंदर आप जो और फलसफा है कि क्यों दिमाग के वो खली जो 60 ट्रिलियन होते हैं वो रह के फिर आप 100 बिलियन पे आ जाते हैं, ये चूँकि इस्तेमाल नहीं हो रहे होते तो वो डाई होना शुरू हो जाते हैं। तो सिर्फ जो फिक्स रहता है वो 80 से 100 बिलियन के दरमियान का रेशियो है कि जो कि अडल्ट में रहता है। जो बाकी डिस्ट्रॉय हो गए हैं वो क्यों हो गए हैं कि आपने यूज़ नहीं किया। तो जब आप मल्टी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो आप दिमाग के जितने खलिए इस्तेमाल करेंगे, जो जब आप लैंग्वेज सीखने जाते हैं तो आप जो डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं इनके अपने फिनोटिक्स होते हैं। ठीक है, अब जो रस्मुल ख़त है इसे जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं इनके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं 4 डिफरेंट, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड 4। तो चारों का सर्किट अलग, चारों की डायमेंशन दिमाग के अंदर अलग लिहाज से डेवलप होती है। क्या ये ज़रूरी है कि जिसको बोलना होता है वो लिख भी सके? ज़रूरी है? यानी जो पढ़े लिखे नहीं है आप उसे बोले उर्दू लिख के दिखाओ, बोलेगा उर्दू लिखनी नहीं आती। जिसको पढ़ना आता हो ज़रूरी वो लिख भी सके? ये भी ज़रूरी नहीं है। जो लिख रहा हो ये ज़रूरी कि उसे समझ भी आ रहा हो? तो फिर आगे ये क्यों कहते हैं कि भाई ये तौजिल मसाइल में ये समझ नहीं आ रहा। मेडिकल के स्टूडेंट जब फिजियो फार्मा पढ़ा रहे होते हैं बोलते हैं बड़ी मुश्किल है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको अगर पढ़ना भी आता हो, तहरीर करना भी आता हो और बोलना भी आता हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि क्या करो समझ में पाओ। इसलिए पहली आयत कौन सी आई? इक़्रा, फलसफा क्या करो, पढ़ तो लो कम से कम, किताबें मौजूद हैं, तौसी मौजूद है, लिटरेचर मौजूद है, पढ़ तो लें कम से कम, यहाँ से तो आगाज करें। जब पढ़ेंगे तो फिर मरला बोलना लिखना समझने पर आएगा। अब अंबिया तो आए नहीं हम कि भाई आगे और इल्म लगाने के मालिक सब चीज़ें इंजेक्ट हो गई हैं, ये मरल भी आ सकता है। वह तिल मलाइका का मिजदाक बन जाए तो फिर जो नहीं जानते वो भी पता यदि सर, जिसको यानी अकल बजत बाज़ साहब कहते थे कि इसको फॉलो कर लो, अगर जितना जानते हो उस पर अमल कर लो तो जो नहीं जानते वो खुदा सिखा देगा, ये इसकी हदीस है। तो जो जानते हैं इस पर अमल करें तो ऑटोमेटिक आपको वो मफाहिम आएंगे जो बेसिकली आपने कभी जो पढ़े भी नहीं होंगे, जो कभी सुने भी नहीं होंगे, फिर वो कहाँ से होता, वो फिर आपको वदियत होती है, खुदा अता होती है फिर वो खुदा की तरफ से। क्योंकि आप इस ट्रैक पर आ गए हैं कि जहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ बरसात है, किसकी, इल्म की, हिकमत की, मारफत की। तो उस बरसात में अगर आना है तो कुछ जानवे अदब तय करने होंगे, कुछ मुश्किलात, कुछ मसाइब और कुछ इम्तहान देंगे तो फिर एंटर होंगे। ठीक है ना, एमडीकेट हो रहा है ना, अब एक क्लास वन का बच्चा है बोले एमडीकेट में अपेयर होना है, बैठने देंगे उसे? मैट्रिक 100% देंगे, आ जाए बोले कि एमडीकेट देना है, देंगे? एलिजिबिलिटी नहीं है, एलिजिबिलिटी के लिए कि आप प्री मेडिकल लेके इंटर किया हो, आपने कंप्यूटर साइंस लिया हो 100% ले लें एमडीकेट में बैठने दिया जाए, नहीं, क्योंकि आप एलिजिबल। तो इस तरह की एलिजिबिलिटी के तकाजों को तो पूरा करें तो जब आप उस ट्रैक पे आ जाएंगे तो फिर तो फिर बाहर बरसात वो गुहर मिलेंगे जो गुहर आप सिर्फ सोचते हैं, समझते हैं या सुनते हैं उन वली खुदा के बारे में, वो उन उर्फा के बारे में जो इन मराइल को तय कर चुके हैं। चलें जनाब, सही है। तो टॉडलर के अंदर सेकंड ईयर तक आपने कॉम्प्रिहेंशन का उसका फेज डेवलप हो रहा होता है, तो आपने अल्फाज एडिशनल शॉर्ट सेंटेंस भी, ठीक है ना, जैसे बात की अगर वो पापा कह रहा है तो आप उसको कहेंगे हाँ मैं पापा हूँ, जी मेरी जान, इस तरह करके। तो आपकी ये जुमले उसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज भी एनहांस करेंगे, उसके लैंग्वेज के सेंटर्स को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है जनाब, टिप्स 2 से 3 साल के बच्चों के लिए क्या क्या होनी चाहिए, उससे पहले हम अप टू 2 ईयर्स के लिए कुछ बातें बयान कर देते हैं जो आपको अभी बयान की हैं। अब इस फेज के अंदर आपके पास, जैसे हमने बात की कि खुद अगर लैंग्वेज की बात की है तो इसके अंदर 4 डिफरेंट अलग डायमेंशन है, बोलना, लिखना, पढ़ना और जो है वो साथ में जो है वो सुनना। इसी तरह जो चीज़ वो देख रहा है किस फॉर्म में क्या है, यानी ऑब्जेक्ट्स, अगर आप उसको पजल ला के देते हैं तो पजल में अल्फाबेट्स के पजल अलग चीज सिखाएंगे उसको, ऑब्जेक्ट के पजल, ऑब्जेक्ट में फिर अगर आप उसे वो अशिया जो आप इस्तेमाल करते हैं, फलों, पौधों, मुख्तलिफ ममालिक के झंडे, ये अब आपके ऊपर है कि आप उसको क्या सिखाने जाते हैं, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट रखें। अच्छा, यहीं से फिर हम लेकिन बाजार पर इसके लिए खुद भी इतना बाइल होना ज़रूरी है कि यहीं से फिर हम बच्चे के ट्रेंड को समझ सकते हैं कि ये बच्चा टेक्निकल हैंड अप्रोच रखता है, ये बच्चा जो है वो सब्जेक्टिव अप्रोच रखता है, ये बच्चा ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखता है, ये बच्चा क्या है, डल है, ये बच्चा शाय है, ये बच्चा बेसिकली थोड़ा सा पैसिव रहता है, एक्टिव रहता है। तो यहीं से फिर हम उसी तरह के ऑब्जेक्ट को पिक करें ताकि इसकी कैपेबिलिटीज और पॉलिश हो सके। तो समझना पड़ेगा कि आपने 4 डिफरेंट मोडेलिटीज सामने रख दी और बच्चा उन चारों में से एक को पिक करता है, तो इसके माने कि इसका इंटरेस्ट इस तरफ है और वो ऑब्जेक्ट जिससे रिलेटेड था। मसलन एक बहुत ही आम फैन मिसाल दे दें कि आपने जो ट्रेंड बना दिया है कि बच्ची यानी जो बेबीज होती हैं उनको हम क्या दे रहे हैं, डॉल गिफ्ट में, ट्रेंड है ना ये, क्यों? आप तो 40-50 साल के हो गए भाई, ये अभी आपके जहन में गुड़िया क्यों है यहाँ पर कि छोटी बच्ची है तो गिफ्ट में वुमन टॉय में गुड़िया दी जाती है। और बच्चों में हमें 2 ट्रेंड है कि मसलन डॉक्टर सेट दे दें या गन दे दें, गन इसलिए कि आर्मी बना दें और डॉक्टर सेट लेने डॉक्टर बन जाए बच्चा, बच्चियों के लिए आपको किचन सेट चाहिए, यानी आप ये बताना चाह रहे हैं कि बेटा तुम गुड्डू गुड्डियों से खेलो बस, या फिर बड़े हुए किचन संभालो, आप एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं उसके लाइफ करियर के लिए। तो यहाँ तक महदूद रखना उसे, भाई किचन हांडी संभालनी है या गुड़िया गुड्डों से खेलना है, तो इसलिए जब वो बड़ा होता है एक ही ख्वाब आते हैं शादी के। ये मैं आपको हर चीज़ की आउटकम बता रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं तजियाती अंदाज में जो इंसानी नफ्सियात है उसके पहलू कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं, उसके पीछे क्या चीज़, कौन सी सोच, कौन सा एक्शन कारफरमा हुआ था जो बच्चा बड़े होकर बोलता है शादी। जब गुड्डे गुड्डी की शादी बचपन में करवाई जाएगी तो वो लिपस्टिक भी लगाएगी 7 साल की उम्र, वो मल्टी कलर के ड्रेस पहनना पसंद करेगी, और जिनको बार भी दी जाएगी तो वो तो फिर कहेंगे हम भी इसी तरह की ड्रेसिंग करेंगे। अगर घर में फंक्शन में रेगुलर उस तरह की ड्रेसिंग नहीं की जाएगी, कम अज कम स्कूल के फंक्शन वो करके जाएगी। दिस इज रियलिटी इन सोसाइटी, देख लें आप, सिटी स्कूल, बेकन हाउस, इस तरह के कोई स्कूल के एनुअल फंक्शन में जाके आप बैठ जाएं बस और मुशाहदा कर लें ये छोटे छोटे क्लास के बच्चों की ड्रेसिंग पर। बच्चा यानी 3, 4, 5, 6 क्लास खुद तो नहीं पहने ना, अम्मा अब्बा नहीं ला के दे के, खुद तो जाके ला नहीं सकता, अम्मा अब्बा ही नहीं ला के दिया होगा, तो ड्रेसिंग देख के आप पर्सनैलिटी असेस कर सकते हैं और माइंड सेट असेस कर सकते हैं उनका भी, उनकी फैमिली का भी। मुआशरा आगाज इतने से पॉइंट्स होता है यहाँ से कि दिए क्या, इसको जो सामने चाहिए ला के दिए क्या दिए। KPK के अंदर, क्योंकि KPK वगैरह से ट्राइबल एरियाज से है, अभी यहाँ पर अगर सांप छोड़ने क्या होगा, चले सांप तो अगर चले मस्जिद जाऊँ जनरल बाहर की बात कर लें, अगर कुत्ता आ जाए क्या होगा कि देखें, अभी आप ट्राइबल एरियाज छोड़ दें इंटीरियर से चले जाएँ, छोटे बच्चे वहाँ कुत्तों में बैठ के सवारी करते हैं, खेलते हैं उससे, हम क्या करते हैं वो दूर से देखा तो हम रुक जाएंगे भाई, चीख हम पूरे बॉडी की फ्लाइट एंड फाइट बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है, रोंगटे खड़ा हो जाएंगे, शिवरिंग होने लगी, कुत्ता आ रहा है, क्यों इंस्टिंक्ट में बिठाल दिया ना ये चीज़ खौफ की, क्या से बिठा बचपन से, जब डॉग ही आ रहा है वहाँ पालते हैं एज अ पैट रखते हैं, और यहाँ पर दूर गली से कोई आया तो फिर वो भागते हैं हम लोग। इंस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बचपन से उन ट्राइबल एरियाज के अंदर गन वगैरह कॉमन है, और यहाँ पर अगर गन दी जाए तो लोड नहीं होगी जब चैम्बर खींचते हैं।
क्यों?
क्यों मसल इसका भी लेने को खींच सकेंगे, ताकत लगती है, और जो दूसरी एसएमजी दे दे तो कंधे उतर जाएगा। और वहाँ पर जनाब अपने वीडियो अगर देखें तो 9-9-8 साल के बच्चे एसएमजी चला रहे होते हैं, क्योंकि बचपन से उनको गिल्ली डंडा नहीं दिया गया है, कोई ही क्यों कॉमन है वहाँ पर, हमारे क्या दिया जा रहा है? जो दे रहे हैं वो बन रहे हैं बच्चे पे। तो इन चीज़ों में तवज्जो दें, ये चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही है आगे की तमाम उसके करियर को भी, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट को भी, और उसके लाइफ के आधार को भी। क्या हदफ सेट करना चाह रहे हैं उसकी लाइफ का? याद कर पा रहा है, पैसा कमाने की मशीन बनाना है, योर चॉइस, ना सिर्फ इमाम बनाना है, योर चॉइस। एक मॉडल होता है जिसको हम कहते हैं गीगो मॉडल, एनीबडी नोज अबाउट द गीगो? जो लेक्चर में बताया था हमने वहाँ पर, गीगो, GIGO। MBA किया हुआ किसी ने यहाँ पर? MBA कुछ इस तरह कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह के अंदर ही बताई थी चीज़ें सारे। GIGO गार्बेज इन गार्बेज आउट, क्या मायने? गार्बेज किसे कहते हैं? कचरे को। तो कचरा डालेंगे कचरा निकलेगा, बच्चे में जो डालेंगे वही बच्चा बनेगा। कार्टून के आदि बनाएंगे, डोरा, हीमैन, बैटमैन, निंजा टर्टल, टॉम एंड जेरी, अभी पूरे एक बहस है इस पर भी, कभी हम असेसमेंट बोलें आप उल्मा से टीचर से कि इन पे असेसमेंट एनालिटिकल लेक्चर्स ने जो कैरेक्टर डेवलप करवाए गए हैं टॉम एंड जेरी और इस तरह के जितने सीरीज के, इसके पीछे थिंक टैंक्स ने क्या लॉजिक रखे थे, पता लगे था कि आपको जो माइंडसेट बिल्ड किया गया जो जनरेशन के अंदर वो कहाँ लेके गया। जितने मशहूर कैरेक्टर्स हैं इस तरह के एनिमल बेस क्यों, आप लोग की जब ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए सोचिएगा इस पर क्यों। टॉम एंड जेरी क्या है? एनिमल। पिंक पैंथर एनिमल। स्पीडी गोंजालेस कुत्ता, ठीक है। निंजा टर्टल मेंढक। जो ह्यूमन कैरेक्टर बनाएंगे वो मावारा बनाए, ह्यूमन नहीं, ह्यूमन से मावारा, सुपरमैन, कौन उड़ला भैया में से आते उड़ के जाता है जनाब, बैटमैन कौन है जो यूजा, सही। तो वो चीज़ बताई कि रियलिटी नहीं है यार, रियलिटी से हट के बताया है या आपको जानवर बनाया, ठीक है। फिर तीसरा वो फैंटिसाइज कैरेक्टर्स, तीन डोमेन हैं काम जिस पे हुआ है, आप समझे इस पूरे कोर फलसफे को। फैंटिसाइज कैरेक्टर्स, बारबी डॉल, डोरा, ये वो, ये सब चीज़ें जो इंजेक्ट की गई हैं, जो हम पर इत्मीनान से खुद भी बैठ के देखते हैं, हम माए मैं भी स्ट्रेस आउट होता हूँ, देखती हूँ मैं भी बैठ के, इसीलिए पेरेंट्स की बात बता रहा हूँ, हम पेशेंट आके बताते हैं। डॉक्टर साहब हम भी अक्सर टॉम एंड जेरी में बहुत पसंद है, एज देखें जनाब 40 ईयर्स एज है, टॉम एंड जेरी बैठ के देख रही हूँ, उधर ही टॉम एंड जेरी देखने के लिए आपको ज़िंदगी दी थी। यहाँ बैठे मजलिस में तो जनाब कासिम करवाएं, जनाब अली अकबर की मसाइब करवाएं, तो भले ये रोल मॉडल हैं, वहाँ बैठ के जनाब मैं भी कार्टून और फलाऊँ, कहाँ हैं हम लोग? क्योंकि समझे नहीं हकीकत को कि हम लोग किस दौर में रह रहे हैं और चीज़ें बारह, सही है। तो पहली चीज़ ये कि आपने अपने बच्चों को टॉयस देने के जो उनके अंदर एनालिटिकल स्किल भी डेवलप करें, उनके इंटरेस्ट को भी आइडेंटिफाई करना पेरेंट का काम है। जैसे हमने बात की कि चार डिफरेंट ऑब्जेक्ट रखे, उस बच्चे ने अगर चारों उठाए ये भी अच्छी चीज़ है, इसके माने कि वो मल्टीपल लेवल पे ग्रो करना चाहता है, सीखना चाहता है, ज़्यादा एक्सप्लोरेटिव नेचर होती है बच्चों की, अच्छी चीज़। लेकिन डेफिनेट अगर वो चारों को पिक भी कर रहा है, एट द एंड यू विल रियलाइज कि एक चीज़ पर ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेता है, दैट मीन्स उसका मेन कोर इंटरेस्ट उस सेक्टर की तरफ। अब जैसे आपने डॉक्टर सेट रखा, आपने टूल्स जैसे गार्डनिंग के टूल्स होते हैं वो रख दिया, आपने किचन सेट भी रख दिया, आपने पजल्स रख दिए, तो पजल में जो डायग्राम है वो कौन से रखी है आपने? सीनरी रखी है, कोई एनिमल के रखी है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है? इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं, वो किस वाले पजल को ज़्यादा उकरता है, यहाँ से आप उसकी अप्रोच आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये कब होगा, आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा। बच्चा चीख रहा है, टॉय का डब्बा, पहली बर्थडे सब मनाते हैं, खूब मिलता है, सारे जनाब टॉय उड़ेल दिए ताकि किचन में काम कर लूँ, मुश्किल है घर तरबियत। अब प्रैक्टिकल मसला जारी बात है, सास बीमार, शोहर ने जाना है, कपड़े उसके स्त्री, बच्चे जो बड़े हो चुके हैं उनके लंच टिफ़न, घर के काम कैसे करूँ, तो जिहाद क्यों कहा गया इसे? अब सब जिहाद तो समझे, तो महाज पे 8 कीजियों का वजन उठा के मीलों पैदल चलना, बाजों पर जख्मी हुए हैं, गोली भी लगी हुई है, साथी को भी उठा कर लेके चल रहे हैं, तो आसान मुश्किल है ये जिहाद। लेकिन इससे ज़्यादा जिहाद औरत का जिहाद क्या, कुछ हदीस पढ़े, औरत का जिहाद किसे करार दिया है घर के मान के अतबार से, पढ़े रसूलुल्लाह की हदीस। पर हमारा चूंकि, अब फिर वापस पढ़ उस पॉइंट पे, चूंकि तरबियत नहीं होती शादी के बाद, हम तो समझते हैं कि उस जगह जाऊँ जहाँ घर एयर कंडीशन होगा, साहब जी की गाड़ी और शेफर खड़ा होगा जो मुझे आज यहाँ की शॉपिंग कराएगा, कल क्रेडिट कार्ड दे दिया मुझे तो मैंने ये ओ, तब ये उन्वान रखा हुआ है शादी का आपने, तरबियत बच्चे की तरबियत तो बोझ लगी, क्योंकि उसके एम्स अलग थे, शादी के बाद घूमना, आउटिंग, आज यहाँ आ कल वहाँ, जब ये आपने अदब रखा तो सारी बात है आप भी डिस्टर्ब हो, बच्चों को कैसे टाइम देंगे अपने। लेकिन अगर हदफ क्लियर होता तो चीज़ें आसान लगती, जो मुजाहिद जाता है जबरदस्ती जा रहा है, जो लोग 25 लाख लगातार सिर्फ ईरान की बात हो रही, नाम जिन्हें लिखवाए हैं, एक रजाकार फौज उनकी भी है साइन की, जब नेतन्याहू वहाँ गया था तो गालियाँ दी हमारे तुम्हारे मरवार, कितने लोग नहीं जा रहे, क्योंकि वहाँ भी रजाकार फौज है ना, क्योंकि फौजी तो ओरिजिनल काम है, तो वहाँ भी सिस्टम वही है जो ईरान का है, कि वहाँ सबको ट्रेनिंग दी जाती है औरतों और मर्दों को, सर्व दे आर बाय लॉ देयर ऑल द सिटीजन आर सोल्जर्स, ठीक है। तो क्यों कि वो भागते हैं, कि उन्हें पता नहीं, कि उन्हें पता कि अगर हम गए इन लोगों के सामने तो मारे जाएंगे, लेकिन जो यहाँ का फौज है, जो इलाही फौज है, वो तो जाती है भाई जाऊँ किसने मरूँ, दोनों की सोच में फ़र्क है, लेकिन दोनों महज। तो जब औरत को जहन में वो सारी आसाइशें शादी के अनुमान से आएंगी, तो फिर ये कैसे इसको महाज समझेगी, फिर कैसे हर 2 घंटे पे उठ के उसे कभी फीड करना, कभी उसके नैपकिन चेंज करना, और सुबह को फिर नमाज के लिए तैयार होना, फिर उसके बाद नाश्ते का इंतजाम भी शौहर ने जाना है, बच्चों ने जाना है, और फिर सास की और ससुर की दवाओं की, तब जिहाद माना जाए, आमादा होगी तो माना जाए, मन ही बोझ लगे मैं क्यों संभालूँ, शरी तौर पर तो वाजिब नहीं है मेरे ऊपर, तो शरी तौर पर वाजिब है कि यहाँ के लोग वहाँ जिहाद करें, सवाल जब तक क्लियर फतवा अगर ना आए तो वाजिब तो नहीं है किसी में, क्यों जा रहे हैं, लेकिन अंदर वो पैशन, अंदर वो सर्व करने का, अंदर वो मकाम जो बात की गई है शहीद की, अंदर वो कॉज कि राह खुदा में अपने आप को, तो आप घर के अंदर बैठ के ये ताबीर यही हदीस की, आप राह खुदा में, आप राय खुदा में जिहाद करने वाली हैं, अगर आप तरबियत फर्जत इस उन्वान से करते हैं तो आपको ये पूछा, रसूल से पूछा गया था आगे कभी औरतें आगे जोश में है, जो बदर चल शुरू के जो मुसलमान हैं आप सोचें किस लेवल के होंगे, बिल्कुल प्योर क्रीम थे वो, यानी बदर खंदक बहुत 3 जंगें हो गई हैं, जख्मी के जख्मी पड़े हुए, जो बचे हुए हैं जाके बात तक क्यों थे बदर के अंदर, एक तो कम मुसलमान के चंद जो थे आपके पास जंगों में, कुछ जख्मी कुछ शहीद, तो अफराद की कमी थी, औरतें आ गई, हम यानी वो औरतें कौन है अंदाजा लगाई, औरतें भाई भी सराज लोग बेचैन जाने के लिए उस वक्त के भाई मर्द तो हमारे उसमें हम जाना चाहते हैं, तो तुम्हारा जहाद है ही नहीं, वो कौन जहाद फिर हम या तुम्हारा घर तरबियत करो, तो मैं वही सवाब मिलेगा जो राय खुदा के अंदर इस शहीद को मिलेगा, वो तो शहीद हो रहा है, आप रोजाना शहादत का दर्जा ले सकती हैं रोजाना की तरबियत करके, समझे तो इन अनावीन को कि ये अनावीन कोई मामूली अनावीन नहीं है, लेकिन चूंकि हमारी तरबियत नहीं हुई है हम मफाहिम को किसी और एंगल में समझते हैं, लिहाजा मामला ये चल रहा है, ठीक है। टॉय वाला हो गया, मल्टीपल चॉइस देनी है उसको आपने, और आपने पिक करना है कि बेसिकली बच्चा क्या कर रहा है। इसी तरह जो है वो फ्री टाइम बच्चे के साथ गुजारना नई चीज़ों के लिए, तो आए तो सेट पैटर्न का हिस्सा है। उसको अगर आप चाहते हैं कि दिमाग उसका ज़्यादा इंगेज रहे नई चीज़ों के लिए, तो बच्चों को नए पैराडाइम में डालना, नई इन्वायरमेंट में लेके आना। वो नई इन्वायरमेंट बच्चे को मजलिस में लेके आना भी है, मुख्तलिफ अब वो चाहे घर की, मोहल्ले की, मस्जिद में लेके आना भी है। ठीक है, ये काम फादर का है कि मस्जिद में औरतों का काम, जैसे मुझे बड़ी एक जगह लिखा हुआ था कि बच्चों का दाखिला ममनू है मस्जिद में, तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अच्छा, गालबन अब चूँकि हम महसूस नहीं कर रहे, हो सकता है कि कई दफ़ा ऐसा हुआ हो कि बच्चों ने आगे नजासत की उतारी, तो मस्जिद को पाक, और ये मरहला है क्योंकि कारपेट को इस तरह पाक करना कोई आजकल कोई आसान काम थोड़ी है, तो हो सकता है कई है, तो इसलिए उन्होंने बैन किया हो, तो इसमें जिम्मेदारी किसकी थी? अगर मस्जिद में लेके आए हैं, अगर आपके बच्चे पॉटी ट्रेंड नहीं हैं, कम अज़ कम पैम्पर के साथ लेके आए उसको। अगर तरबियत करनी है, पैम्पर का खर्चा ज़रूर है, लेकिन कम अज़ कम मस्जिद का आदि तो हो। ठीक है, बहुत सारी मिसालें कि ऐसे ऐसे अफराद हैं कि जिनके वालदे ट्रस्ट का हिस्सा हैं और सालों तक मस्जिद की शक्ल नहीं देखी उनकी औलादों, सालों तक क्यों? अब तो रोज़ाना आता होगा, ट्रस्ट का हिस्सा है, बच्चा क्यों नहीं आया एवेल्युएट करना, ये सब फैक्टर्स निकलेंगे साथ। अब तो जिम्मेदारी वहाँ पूरी कर रहे हैं, बच्चा जो है वो जो हमारे सेशंस अगर IMI वगैरह में, तो मैं अपने बच्चों को अक्सर लेके जाता हूँ, बैठे देखें वो भी अब्बा क्या कर रहे हैं, क्या हो गया, बोर तो हो रहा है, ऐसे एक डेढ़ घंटे बैठना मुश्किल है बच्चे के लिए, लेकिन उसके अंदर एक हैबिट डेवलप होगी। इस्लामिक या लेक्चर के दौरान बैठना कैसे है, अंदर से तिलमारा ज़रूर रहा होगा यार, इससे बेहतर खेल लेता पीछे कदम खाला का घर नहीं, अब बनाने नहीं बैठना है यहाँ पर। डेवलप जब हो जाएगी तो फिर ये लाइफ टाइम के लिए उसके, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा इन पेशेंस के साथ करना, ये कुछ चीज़ें हमें बर्दाश्त करनी है अपने लिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को करें। एक इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ जो देखनी है आप, यानी जिसको मैंने इधर रेड किया हुआ है, वो ये कि बेसिकली आप एक चीज़ को ज़रूर क्लियर रखें तरबियत के दौरान कि आपने बच्चे के ऊपर कोई चीज़ पूछनी नहीं है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम मिस करते हैं, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम वो करवाना चाहते हैं जो हम चाह रहे हैं, पहले रीड करें बच्चा क्या करना चाह रहा है। अगर हो सकता है बच्चा, जैसे मिसाल के बच्चा ऊपर चढ़ के चूम रहा है, अच्छी चीज़ है। दो तरीके हो सकते हैं कि ट्रस्ट ने देखा और के जो वालिद थे वो लोग गलत चीज़ों को घसीट लिया, अब उसने मसलन अलम चुमा नीचे उतर गया, ख़त्म हुआ। तो जब तक वो कोई पॉजिटिव चीज़ कर रहा है कि आप सिर्फ आंखें रखें उस पर, कि वो ऐसा ना हो कि गिर जाए, कोई ऐसी इसे नोच ना ले, ये ज़रूर आप, लेकिन अभी उसके ऊपर कोई चीज़ एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ना पूछने की ज़रूरत है। हाँ, अगर वो कोई गलत काम करने जा रहा है, वो सामने देख रहे हैं कि वहाँ प्लग खुला हुआ, प्लग में जाके यकीन इसने हाथ मार, अब आप उठें, इंटरवीन करें राइट वे के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ, कि उसको ये फील हो कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उसके लिए नुकसान दे हो। आजकल बच्चों को कायल करना बहुत मुश्किल है, कुछ समझाओ तो जवाब देते हैं, इस पर वैसे हमने भी थोड़ा सा बाहर गुफ्तगू की थी। बच्चे का जुनूनी होना, हाथ उठाना, इसको कैसे ओवरकम किया जाए? ठीक है, पहले तो बच्चों को, जैसे हमने बात की ना बच्चों के टाइप्स हैं, तो बच्चों को समझना पड़ेगा कि अगर हाइपर हो रहा है वो क्यों हुआ है, अगर वो नर्वस है तो क्यों है, अगर वो एग्जेजरेट कर रहा है तो क्यों करता है। तो सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा अपने अंदर, तो इसको अपने अंदर से ही स्टार्टिंग ले के न्यूट्रलाइज करना होगा। ये जितनी भी साइकोलॉजिकल इशूज़ होते हैं, इसको हम पहले रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करके सफ़र रिवर्स मोड में लेके जाए। इस तरह रिवर्स इंजीनियरिंग होती है ना, कि जहाज़ बनाने का फॉर्मूला तो पता नहीं, जहाज़ पकड़ लिया, अभी जो चीज़ें जो मिल रही हैं हिज़्बुल्लाह उसकी, तो वो रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आर्मर टैंक मार रहे हैं, उनके मरकावर टैंक्स कैसे मार रहे हैं, उन्हीं के ही जो एंटी एयरक्राफ्ट, ठीक है ना, लॉन्चर्स थे, उसी को रिवर्स इंजीनियर करके मॉडिफाई कर दिया, वही आप उनके वो जो टैंकर जो थे वो टैंक्स हैं जिस पे मिसाइल, और वो रॉकेट लॉन्चर से उसको हिट कर देते, जो कि अमेजिंग है। ठीक, क्यों? रिवर्स इंजीनियरिंग की, रिवर्स इंजीनियरिंग एडिशन कर दिया उसमें। अब कोई पैसा लंबा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, रॉकेट लॉन्चर बंदा खड़ा वही मारेगा, वो टैंक ख़त्म। एक एक टैंक की कॉस्ट, जो मिसाइल की कॉस्ट, जो सबसे छोटा मिसाइल है वो $240 का है, और ऐसे ऐसे मिसाइल है यानी उसको मारने के लिए, यानी अगर आप कई अप्लाई करें तब जो $3-4,000 के, $70 के उससे जो है वो निपटा रहे हैं इतने उनके कई लाखों के टैंक्स में, $70 के लॉन्चर के जरिए, सिंपल, समझ रहे हो। रिवर्स, तो जो फैक्टर डेवलप है, चाहे वो जुनूनी हो गया हो, चाहे वो बाद में सुनता हो नहीं, अतात वाला मामला, तो हमें थोड़ा सा पहले सबसे पहला फेज अपने अंदर करना होगा, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बजाय इसके कि हम यहाँ से जाके उसको गला दबाएं कि तुमने नहीं करना था, तुमने क्यों आवाज़ निकाली, तुमने क्यों जवाब दिया, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कोई जिन जिन पॉइंट्स पर वो निगेट कर रहा है उसको आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रलाइज करके, फिर जब आप उसके कोर रूट पर पहुँचेंगे तब वो न्यूट्रलाइज होगा जाके। कभी ऐसा मुमकिन नहीं कि आज एक गैर मुद्दी शख्स, एक आपने डांट पिलाई, डंडा लगाया, ये क्रिमिनल होते हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं कई कई दफ़ा जेल में बंद होके आते हैं, सजाएं काटते हैं तो छोड़ देते हैं क्या? फलसफा क्या है? आप पनिश कर रहे हैं उसको, भाई आप उसकी तरबियत ही नहीं कर रहे, तो लादा आके वो दोबारा मोबाइल छीनता है। आता ना अखबार में लिखा होता है कि जब इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया तो वो पहले 8 दफ़ा पकड़ा जा चुका है। तो हम पकड़े क्या कर रहे हैं? तो हम बच्चे को देखा, अगर आपने बच्चे को थप्पड़ लगाया नहीं, पनिश कर दिया, बच्चे को आगे बोला कभी ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, पनिश कर दिया आपने। पनिश करने से कभी वो चीज़ ख़त्म नहीं होती, ही विल रिपीट एंड ओवर एंड ओवर। तो आपको पहले वो कोर पॉइंट तक पहुँचना है, और उस कोर पॉइंट को जहाँ लास्ट फेज है उसको स्टार्ट करते 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 उसकी बातों की, उसकी थॉट प्रोसेस की रिफाइनमेंट करनी, और ये कैसे होगा? कम्युनिकेशन से, डायलॉग से, उसे बैठ के डिस्कशन मोड में करना है, आर्ग्यूएटिव मोड नहीं होना चाहिए। अगेन, यू हैव टू डिस्कस, यू डू नॉट आर्ग्यू। से आर्ग्यूमेंटल लेवल पे ले गए तो वही हो रहा है जो आज ये जो सेकंड सवाल है कि वो पलट के जवाब देता है, क्यों आर्ग्यू? जब हमने उससे बात की थी डायलॉग के, तो आर्ग्यूमेंटल मोड में किया। जब आर्ग्यूमेंट करेंगे, ही विल सी कि मेरा फादर, मेरी मदर हमेशा आर्ग्यूमेंट करता है, तो वो भी सीखेगा आर्ग्यूमेंट। जब आप उसको डिस्कशन मोड में ले जाएंगे, और पॉजिटिव डिस्कशन के अंदर, इसे हम कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कहते हैं, जिसके अंदर आप दोनों डायमेंशन बताते हैं कि भाई देर आर 2 or 3 चॉइसेस, ऑप्शन 1 ये, ऑप्शन बी, ऑप्शन 3 ये सही है, ये गलत है, अब तुम देख लो तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, चॉइस उसमें छोड़ लें, यानी उसे लिबर्टी दे रहे हैं कि बेसिकली आप पिक कर लें, आप खुद सोच लें। जब आप इस मोड में रहते हैं तो फिर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि बच्चा इसको पॉजिटिवली लेता, बजाय इसके कि अब ये नहीं होगा, अब वो नहीं होगा। कभी भी बच्चा आपके सामने अगर ना भी करे तो उसकी हैबिट बन चुकी होगी वो, ठीक है? तो इसलिए, तो अभी इस पर हम डिस्कशन अगले सेशन में भी है हमारी, तो हम जो हैं वो शॉर्ट आंसर्स दोनों के लिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि बेसिकली एक चीज़ बच्चे में डेवलप कहाँ से हुई थी और क्यों हुई है, और फिर अपने आप को थोड़ा सा उस चीज़ को कंट्रोल करके फिर स्टार्ट करना होगा ग्रेजुअली डायलॉग के साथ, जो कि आर्ग्यूमेंटल नहीं होंगे बल्कि कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन मोड में होंगे, जिसमें बच्चे को उसकी अहमियत, अफादियत और उसके नुकसान से आगाह करना है, अवेयर करना है, जो इस्लाम का मतलब है, इस्लाम टेल्स अवेयरनेस। अब मतलब पैगाम पहुँचाना, रसूल का काम क्या है? रसूल कहते कि जो पैगाम, दूसरे लफ्ज़ों में वो अगर मसलन टर्म इस्तेमाल अगर एहानत ना हो, कि कुछ अफराद कहते हैं डाकियाँ, यानी जो खुदा ने बोला वो पहुँचा दिया। इरसाल, तहसील क्या है? रसालत, यानी रसूल जो इरसाल करे, क्या इरसाल करे? जो पैगाम इलाही है, डाकिया पैगाम इरसाल करता है। तो आप भी उसको पैगाम में, राइट में, दोनों डायमेंशन बता के तब वो आपकी बात को सुनेगा, समझेगा और रिस्पॉन्ड करेगा। अगर नेगेटिव कर रहा है फिर सोचे कि क्यों, किस वजह से, किस थॉट मैकेनिज्म, उस थॉट पर फिर काम करें उसे। अगेन रिपीटिंग द सेम सेंटेंस कि ये एक दिन का काम नहीं, एक हफ्ते का काम नहीं है, इट टेक्स ईयर्स। तरबियत को जो उन्वान है वो बेसिकली सालों चलता है। जब आप बच्चे को स्कूल में एडमिट कराते हैं पहली क्लास के अंदर, तो मैट्रिक 10 साल में करता है, वो सीखता है मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, ये वो, जो तरबियत है ये तरबियत भी कोई ये थोड़ी है। इसीलिए इल्म का मरहला क्या है? कंटिन्यूस है। इसीलिए तरबियत का मरहला भी कंटिन्यूस है। हम अगर बूढ़े भी हो तो इसके माने ये नहीं कि तरबियत की ज़रूरत नहीं है। तरबियत की ज़रूरत हर एज में है। इसीलिए मारफत की भी हद नहीं, आपने लेवल्स अप करते जाने। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन लेवल्स अचीव कर सकते हैं आप। अगर आपकी ज़िंदगी 1000 साल तक की भी हो तो उलूम भी इतने, तरबियत के अनाबीन भी इतने और मारफत के लेवल भी इतने कि आप उसको तय करते चले जाएँ। तो ये काम आपने बच्चों के साथ करना है। तो बच्चों के साथ कभी भी आप आर्ग्यूटिव मोड में, अगर यानी स्पेशली यानी इसके लिए मेडिकल टर्म होता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड, यानी ये दवा इस पेशेंट में नहीं दी जा सकती। 7 साल तक आर्ग्यूटिव मोड बच्चों के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब टू एटलीस्ट की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा, एटलीस्ट 7 ईयर्स तक आर्ग्यूटिव मोड इस्तेमाल ना करें बच्चों के साथ। इस्लाम के हिसाब से भी यही चीज़ मिलती है रिवायतों में। साइंस इस चीज़ को नफ्सियात की मुख्तलिफ थ्योरीज पेश करती हैं जो बच्चों के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं कि आपने 7 साल तक आर्ग्यूटिव मोड में नहीं रहना चाहिए। ये सब डिस्ट्रक्ट कर उसके पर्सनालिटी को, बिहेवियर के अंदर उसके डिफरेंट किस्म के नेगेटिव पॉइंट्स को ईजाद करती है। ठीक है, तो बच्चों को आपने कभी भी जो है वो ये नहीं करना कि जो है वो कमांडिंग मोड में रख के और उसे आप इंस्ट्रक्शन देते ना, हमेशा उसे आप वो करें। दूसरी चीज़, एक और भी चीज़ है कि आप अगर उससे कोई कंसर्न आ गया, कंसर्न क्या है, मिसाल के तौर पर जब बच्चा बीमार हो गया है, जब बच्चा आपकी अटेंशन चाह रहा है, ठीक है ना, वो मुसलसल आवाज़ मामा 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 मामा, आप चूँकि रोटी पका रही हैं, आप चूँकि दफ्तर थके हुए आए हैं, आप कॉल पर बात कर रहे हैं किसी दोस्त से, वो मुसलसल हाथ पकड़ के मामा मामा, जब आप इग्नोर पॉलिसी पर जाएंगे, बच्चे भी इग्नोर पॉलिसी आपके लिए इस्तेमाल करेगा। जो आपने बात की कि नहीं सुनते, नहीं सुनने में एक लॉजिक हियरिंग, उसकी जो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है उसको एनहांस ना होने दें। हर शख्स इनसिक्योर फील करता है किसी न किसी माहौल के अंदर। तो बच्चे तो अभी बिल्कुल 2 साल का है, तो उसको क्या पता बाहर का माहौल, वो घर में ही अपने अतराफ में अगर इनसिक्योर हो, उन तमाम पेशेंट्स के अंदर हाई प्रिवेलेंस उन फैमिलीज के अंदर होती है डिप्रेशन की, कि जिनके घर के माहौल इनसिक्योर, इनसिक्योर से मुराद ये नहीं कि बाहर से डाकू कूद के आकर चोरी करने आ रहे हैं, इनसिक्योर माहौल ये है कि अगर मैंने अपने वालिद से बात की या वालिदा से बात की, स्ट्रेट अवे आंसर आना है नो, ये उन्हें सुनना ही नहीं, इसको हम कहते हैं इनसिक्योरिटी फीलिंग विद इन फैमिली। उनको परवाह ही नहीं है, मैंने उनको कहा कि फीस जमा करानी थी बच्चे की, ठीक है फाइन, लास्ट डेट आ गई, भाई 1 हफ्ते पहले बोला था फीस जमा करानी है, या तो आप बताएं पहले कि भाई अभी तनख्वाह नहीं आई है, मैं इंशाल्लाह अरेंज कर लूँगा। ये काम बच्चों के साथ भी, अगर बच्चा जारी बात है वो इस तरह की डिमांड तो नहीं कर रहा ना, बच्चा अगर आप अभी 2 साल का 3 साल का ज़्यादा बोल, वो अगर हाथ पकड़ ला आपको मुसलसल, आप तो बाबा बाबा मामा पे अटेंशन, जब आप उसे अटेंशन देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो सिक्योरनेस है वो डेवलप होगी। जितना सिक्योर होगा उतना ही क्या होगा, इमोशनली स्ट्रांग होगा। एक दफ़ा हमने बात की IQ की, एक दफ़ा हम बात कर रहे हैं EQ की। जब जिन एक लीडर के अंदर एक स्ट्रांग लेवल का EQ होना चाहिए, इमोशनल कोएफिशिएंट, ठीक है, ये भी आपकी इंटेलिजेंस की दूसरी डायमेंशन है। जिस तरह IQ एक डायमेंशन है, इस तरह EQ भी डायमेंशन है। जिस तरह हमने रेजिलियंस की बात की थी कि बेसिकली आपके पास इमोशनल रेजिलियंस है तो यू आर अ स्ट्रांग पर्सन, ये कैसे डेवलप होगी, यहाँ से डेवलप होगी कि आप उसको सिक्योर मोड में रखेंगे, सिक्योर इन्वायरमेंट में रखेंगे, वो बच्चा जो है वो केयरिंग नेचर भी डेवलप होगी और वो सिक्योर होगा। जितना सिक्योर होगा इमोशनली स्टेबल होगा, जितना इमोशनली स्टेबल होगा मसाइल को झेलने के, प्रेशर बेयर करने के, सोसाइटी के, घर के, फैमिली के, इकोनॉमिकल हों कोई भी हों, ज़्यादा प्रेशर बेयर कर सकता है। जितने आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे उतने मसाइल जो है वो आप झेल सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी हम क्यों तलाक़ों की नौबत आ रही है, क्योंकि इमोशनली बिल्कुल अब डाउन हो चुके हैं। इमोशनल हम किसी का सिंगल जुमला बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए हम डिसाइड कर लेते हैं भाई क्या फ़ायदा है, आज ये कर रहा है तो मैं पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारूँ उसके साथ। पैचअप करने का कॉन्सेप्ट ख़त्म और एडअप विद द डिवोर्स, ये सब चीज़ें जो है वो इनिशिएशन इसकी यहाँ से होती है, ठीक है जनाब। 2 से 3 साल तक के बच्चों के अंदर, ये हमने अभी तक 2 साल की बात की, और 2 से 3 साल के अंदर आपने ध्यान में रखना है कि अब यहाँ पर बेसिकली जो डेवलपमेंट माइलस्टोन है, अब बच्चा क्या हो गया है, क्योंकि चलने लगा है, चलने लगा है तो दौड़ेगा भी भागेगा भी, ये वो फेज़ है। यहाँ पर अब आप उसके साथ वो काम करें जो हमने बात की है, पार्क में ले जाएं, घर में हो, क्योंकि अब इसमें बच्चा जो है वो हाथ और पांव दोनों को हाइपर लेवल पर चलाने की कोशिश करता है, यानी प्लेइंग मोड उसका डोमिनेट करेगा, वो हाइपर बॉडी फिजिकल एक्टिविटी को करना चाहता है। जैसे जैसे ये एज अभी ग्रो कर रही है तो दो चीज़ें बढ़ती हैं, साथ में एक्सप्लोरेटिव बिहेवियर उसका डेवलप हो रहा होता है, तो यानी एक्सप्लोरेशन ज़्यादा से ज़्यादा करता है। साथ में क्या होता है उसके फिजिकल, क्योंकि अब इसके सिस्टम डेवलप हो गए हैं तो लिहाजा वो एक्टिविटी भी भरपूर अंदाज में करना चाहते हैं। हम अगर सप्रेस करना चाहेंगे तो वो एनर्जी इसकी लो डाउन हो जाएंगी और फिर बच्चा जो नशोनुमा पाना था, एक दरख्त जो तनावट दरख्त बनना था, वो एक मुरझाया हुआ छोटा सा दरख्त बनेगा जिसको हल्की सी आंधी भी जड़ से उखाड़ देगी, लेकिन जो तनावट दरख्त बन जाता है उसको बड़ी से बड़ी आंधी भी उखाड़ नहीं पाती। उसका आगाज़ इन मराइल से होता है कि बच्चों के अंदर शख्सियत के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना, उनकी फिजिकल ग्रोथ को सामने रखना, उनकी इमोशनल ग्रोथ को सामने रखना, हर एज का अलग माइलस्टोन। इस माइलस्टोन के अंदर आपको पार्क में ले जाना पड़ेगा ताकि क्या करें, फुटबॉल खेलें उसके साथ। आप अगर अल्हम्दुलिल्लाह घरों में अगर आपकी छत मौजूद हो, जो लोग घर में रहते हैं छत पे जाएं, बच्चे के वहाँ खेलें। पार्क अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है कहीं में, छत पे चले जाएं। छत पे नहीं है अगर आपके घर के अंदर फ्लैट में रहते हैं, थोड़ी सी बालकनी या वो मौजूद, वहाँ आप इस तरह का स्मॉल कोई बॉल्स के साथ खेलें, उसके साथ कैच कैच खेल लें। नहीं है ड्राइंग रूम के अंदर कोई या कोई ऐसा स्पेस है इन बिटवीन ड्राइंग डाइनिंग के दरमियान, यहाँ पर आप क्या करें, आप जनाब वॉलीबॉल का सिर्फ एक लाके वो लगा दें, आप उसके बाद बोलें आप निशाना लेते हैं, उससे निशाना भी अच्छा होगा, निशाना अच्छा होगा उसका जो ब्रेन का कॉर्टिकल पार्ट है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ज़्यादा सोचने की सलाहियत, फाइन मूवमेंट कंट्रोल करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, ऐसे अफराद अच्छे निशानेबाज बनते हैं। ठीक है, जो आपका फ्रंटल दिमाग का हिस्सा है, तो यहाँ पर आपके पास फाइन मूवमेंट कंट्रोल करने की, एक दफ़ा मैं जब चल रहा हूँ तो हाथ मूव कर रहा है ना, ये ग्रॉस मूवमेंट है, लेकिन अगर मैं शूट करना चाहूँगा तो बहुत प्रिसाइसली मैं निशाना लेता हूँ, उसी हिसाब से मेरा हार्ट ट्रिगर होना चाहिए उसी फोर्स के साथ। चलिए तो गन है, अगर कोई चीज़ मैं मैनुअल फेंकना चाह रहा हूँ, जैसे बॉल को मैं एम कर रहा हूँ कि बास्केट में जाए, तो अब हाथ कितने एंगल में उठाऊँ, किस रफ्तार से गेंद को थ्रो करूँ कि वहाँ तक पहुँच जाए उतने फिट पे, ये सब कैलकुलेशन है, ये सब फाइन, तो फाइन मूवमेंट के दिमाग के सेंटर्स अलग होते हैं। तो अगर आप बच्चे के हर एंगल को, हर आस्पेक्ट को, विजडम को, सेंसरी एबिलिटीज़ को, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को, आपके बिहेवियरल आस्पेक्ट्स को, इन तमाम चीज़ों को अगर आप एनहांस करना चाहते हैं तो आपको इन तमाम एरियाज़ को अगर आप फोकस कर लेंगे, वो बच्चा एक जिसे कहते हैं कि मल्टी टास्कर भी होगा, एक जिसे कहते हैं वन मैन आर्मी होगा, हर एंगल के डायमेंशन उसको पता होंगे। ठीक है, तो आप जब ये काम करते हैं कि बेसिकली घर के अंदर ही अगर आप नहीं हैं तो आप बास्केट अटैच कर दें और फिर एम करें, वो भी एम करेगा, प्लास्टिक की बॉल लें ताकि अगर कहीं गिरे तो, मतलब प्लास्टिक की बॉल भी आती है, प्लास्टिक बॉल कहीं लगेगी तो कोई चीज़ टूटेगी भी नहीं, शीशे में भी लगेगी तब भी नहीं टूटेगा, इस तरह की एक्टिविटी। दूसरा काम पता है क्या करना चाहता है बच्चा, जो हम अक्सर फिर उलझते हैं, क्योंकि एनर्जी है उसके अंदर, कूदना चाहता है जंपिंग, तब बच्चे को नहीं मिलता तो सोफे पे कूदता है, अम्मा बोलते हैं 40,000 का सोफा ले तो सब कूद कूद के सब बेहाल कर देगा, मैट्रेस पे कूदेगा बैठ के, क्योंकि उसको ये एनर्जी निकालनी है, नहीं निकालेंगे यहीं से चिड़चिड़ापन, क्योंकि एनर्जी एक चीज़, लावा देखा है ना, लावा अंदर पकता है, जब बर्स्ट होना होता है तो फिर वो पहाड़ जैसे सख्त चीज़ को फाड़ के निकलता है, इतना हो जाता है, तो उसको उबलने ना दें, उबलने के तरह लावा ज़मीन की तह में पहले मैग्मा बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, ये मिलते रहते हैं और फिर वो हीट आती रहती है, जितना ज़्यादा बनता जाएगा फिर वो बिल्ड होते हो तो ऊपर पहुँच, आप नीचे लेवल पे काम डाउन, कैसे काम डाउन करें, क्योंकि वो एनर्जी बन रही है, एनर्जी निकलेगी कैसे, जब वो कूदेगा। आपको अगर ये टेंशन, आप एक सेकेंड हैंड मोटा सा काउच ला के डालने वाला बोले तुम्हारे लिए और खुश हो जाएगा, अब कूदो, आओ मैं भी कूद, आप इस पे जंप करें फ्लोर पे, बुलाओ दोनों कूदते हैं, बेटी है लड़की है रोप ला के दे दें, रस्सी कूदो, ये हाइट के लिए, जब उसके यानी जिनको ग्रोथ के इश्यूज होते हैं तो आपके जो बोन्स होते हैं ना उसमें गैप्स होते हैं, ये बोन्स बढ़ती रहती है तो गैप फिल होते हैं तो आपकी हाइट बढ़ती है, जो आप रस्सी कूदेंगे तो आपकी हाइट जल्दी जो है वो अचीव होगी, रैपिड ग्रोथ होगी। तो पॉजिटिव डायमेंशन ड्रॉप करेंगे, बजाय इसके कि कूद के तुम तोड़ रहे हो चीज़ें, तो अब वो क्या करेगा, मतलब जो भी काम करता हूँ हर चीज़ में मना है, ये नहीं करो, तो पूरी शख्सियत उसकी मस्त हो जाती है। जो डेवलपमेंट साइकोलॉजिकल उसकी होनी चाहिए थी, सब हम क्या करते थे, सप्रेस इन्हीं 4-5 साल में करके अब परेशान है, सुनता नहीं, चीखता है, चिल्लाता है, हर एक से लड़ता है। जब ये सब काम किए थे, उसको एनर्जी को जब नहीं निकलवाएंगे तो लावा ही बनना है उसमें, जब लावा बनेगा तो फिर थोड़ी देखेंगे कि अम्मा है, अब्बा है, सामने दादा है, दादे से भी बदतमीजी करता है, हर एक से बदतमीजी करता है, और इधर ये उसकी एनर्जी को ड्राइव करवाएं अंदर से। दूसरी चीज़ इस फेस के अंदर क्या है, डाइवर्जेंस। बच्चे बहुत आसानी से डाइवर्ट हो सकते हैं, तो अगर वो एक्टिविटी करना चाहता है जो उसके जहन में अभी आई हुई है, जैसे हमने बात की जहन की एक्टिविटी को स्ट्रेट अवे नो नहीं करना, अब आप चूंकि आखिर में आपको ऑल्टरनेट होना चाहिए कि अगर वो इस नौयत की कोई एक्टिविटी जा रहा है तो मैं इस वक्त करंट वसाइल के साथ, करंट रिसोर्स के साथ, करंट जंग के साथ क्या ऑल्टरनेट दे दूं ताकि उसकी वो विश फुलफिल हो जाए। ये आर्ट है पेरेंटिंग का, वो जो एक्टिविटी, मतलब वो कहता है कि मैंने भी जो है वो चूल्हा जलाना, अब आप अनसुपरवाइज हो उसको किचन में बोले लो बेटा माचिस को चूल्हा जाओ जलाओ, ये काम दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप एक बार बैठ उसके साथ करें और उसे उसके हाथ से पकड़ के करवा लें ताकि वो लर्न कर ले, फिर बताएं उसको कि देखो एक चीज़ दिखाऊं, ये गत्ता है ना, अगर ये चला गया अंदर क्या होगा, देखो आप देखें जल जाएगा, बोलो अगर तुम्हारी उंगली लग गई ना ये भी ये होगा, अब वो लेसन दे दिया कि अगर इसका नुकसान ही है, तो कल को अगर वो आपके पास जाएगा उसके एग्जाम में होगा कि आपके अंदर हाथ, वरना बच्चे क्या है ना एक्सप्लोरेटिव है, तो आग जल लेगी वो हाथ पे रख देगा, फिर जब जलेगा तो हटाएगा ऑब्वियसली, लेकिन उससे पहले आप टीच कर दें इसका नुकसान ही। दूसरा काम क्या करें, आजकल मार्केट के अंदर ऐसे टॉयज आते हैं कि जिसके अंदर वो बच्चों के खेलने वाले किचन के, तो आप जाने तो उसमें बाकायदा जलने की आवाज़ भी आती है और ऊपर एक बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ला देना उसको ऑल्टरनेट इंटरेस्ट देख के। अब ये नहीं कह रहे कि हर चीज़ ला के दें, लेकिन जो बेसिक उस एज के टॉयज हैं, चूँकि हमारे एक और में क्या है, जब तकरीबात होती हैं बर्थडे वगैरह की तो वो अगले कई सालों वाला सामान दिया जाता है, कहते बहन भाइयों को भाई ये ला के दे दो, उसके भी ये सस्ते में आ जाएगा, हालांकि वो जो चीज़ ला के, मतलब ताया ने भी चचा ने भी इसको साइकिल, भाई साइकिल अभी वो 5 साल का हुआ तब चलाएगा, अभी तो चला ही नहीं सकता, पाव नहीं पहुँच रहा, वो रखी रहेगी भाई, अभी की तरबियत की बात करो, वो 5 साल जब होगा देखा जाएगा कि वो 3 साल का, 3 साल के इसके तकाजे मैंने रीड किए, अब अपनी बहनों को भाइयों को बोलने भाई तुम ये तुम ला दो, लाना है ख़त्म बात, हर चीज़ का वेआउट। लेकिन कब होगा, जब दिमाग सुलझा हुआ होगा, दिमाग चल रहा होगा, तो आप वेआउट निकालते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो इस फेस का डेवलपमेंटल माइलस्टोन ये है कि आप उसके साथ एक्टिविटी करें प्ले लेवल की, जिसके अंदर फिजिकल इन्वॉल्वमेंट्स, ठीक है, जब हमने बात की बाहर जाएँ, फुटबॉल खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, ठीक है, क्रिकेट खेल सकते हैं, हैंडबॉल खेल सकते हैं, इस तरह जंपिंग कर सकते हैं, ठीक है, रस्सी कूद सकते हैं, ये आपकी फिटनेस के लिए भी। यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, जो आर्थराइटिस का मर्स कॉमन है हमारे यहाँ खवातीन के अंदर, ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस का, तो एक पूरी 72,000 खवातीन में बहुत बड़ी, मतलब 72,000 एक बहुत बड़ा फिगर होता है क्लिनिकल ट्रायल के एतबार से, 72,000 खवातीन के अंदर ट्रायल का जो नज़रिया निकला वही निकला है कि जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जो बुढ़ापे के अंदर चूंकि आपके सेल जो होते हैं बोन में दो किस्म के होते हैं, जो कैल्शियम को बनाते हैं ताकि हड्डी प्रॉपर रहे और एक उसको ख़त्म करते हैं, तो इन बीमारियों के अंदर जो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी वो स्टार्ट हो जाती है। उन्होंने कहा है कि जो कैल्शियम को बनाने वाले सेल होते हैं हड्डियों पर, ये दोबारा काम कर सकते हैं बुढ़ापे के अंदर अगर खवातीन क्या करें, जंपिंग वाली, तो उन्होंने एक ग्रुप को जंपिंग वाली एक्सरसाइज करवाई है मुख्तलिफ, रोप करेंगे तो ये है, वैसे जंप करेंगे तो ये, एरोबिक्स करेंगे तो ये है, तो वो कराई तो देखा उनके बोन्स के ऑस्टियोक्लास्टिक सेल दोबारा बेदार हो गए जो बुढ़ापे की वजह से ख़त्म हो गए, बंद हो गए थे, उन्हें दोबारा काम करना, यानी दोबारा बोन जो गुरबिर होना शुरू होती है वो दोबारा स्टेबलाइज होने लगी, आपके लिए समझ रहे हैं आप, तो इन अनावीन से फ़ायदे आपको भी हैं और आपके बच्चों को भी हैं, फिजिकल फ़ायदे भी हैं, स्पिरिचुअल फ़ायदे भी, हर चीज़ का अगर अफादियत हम समझ जाएँ तो फिर हम शायद इसरा इमाम की हदीस है कि अगर तुम में से कौन है जो जहर खाना चाहेगा, मना किया साहब तुमने, ये गुना जहर की मानंद है, ये गुना नजासत है, कोई नजास खाना पसंद करता है? नहीं। तो जब नहीं कर, लेकिन कब, कि जब ये हकीकत पता हो गई नजासत है, तो जिस दिन आपको हकीकत पता लगेगी आप बुरे काम से बच जाते हैं। जिस दिन आपको तमाम फजाइल के हकीकतों का इदराक होने लगेगा वो अड़ॉप करना शुरू कर। जैसे हमने बात की अभी, मिसाल दी हमने कि क्यों एक जवान जो है वो बेदार रहता है और तलब करता है कि मैं भी शहादत के लिए अपने आप को पेश करता हूँ, क्योंकि उसने बचपन से जो शहादत के उन्वान सुने कि इधर शहीद का खून का कतरा ज़मीन पे नहीं गिरता, मगर ये कि वो अपना मकाम जन्नत में देख लेता है, खुदा उसके सारे के सारे गुज़िश्तगाने गुनाह को, तो उसको एक मोटिवेशन मिलती है। दूसरी मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? करबला से मिलती है। जो बचपन से करबला सुनी कि राह इमाम में उन अफराद ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, सब कुछ छोड़ के भूख प्यास की हालत में, एक इंस्पिरेशन वहाँ से मिलती है हमें कि हम इमाम के हम रकाब होंगे। क्योंकि शहदा का मतलब क्या है? जब हम उठाए जाएंगे तो हम उस कैडर में उठाए जाएंगे, जब रोज़ क़यामत, आपने अगर अहादीस पढ़ी हो कि सालेहीन का एक ग्रोह होगा, साबरीन का एक ग्रोह होगा, आबिदीन का एक ग्रोह होगा, तो एक ग्रोह बेसिकली शहदा का होगा। नूरानियत के साथ आएंगे, लोग पूछें कौन बताया कि शहदा है, राय खुदा में बगैर किसी उसके जाने परवान। इंस्पिरेशन वहाँ से ले लेके वो जज्बा रहता है कि मुझे मौका मिले मैं आपको राय शहादत के लिए पेश। तो ये उन्वान पैदा करना होगा इंस्पिरेशन के साथ, पॉजिटिव इंस्पिरेशन, ताकि चीज़ों को हम आगे जो है वो पॉजिटिवली लेके चलें और चीज़ें हमारे जो है ज़िंदगी के अंदर हमारे लिए सबब निजात बन सकें। तो बच्चों के अंदर इस एज में आपने बस ये आखिरी स्लाइड इसकी, एंड देन फिर हम अगले वीक जो है वो करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपने दो तीन काम बहुत तेज़ी के साथ, कि आपने इस फेज के अंदर बच्चों के 3 ईयर्स की स्टोरी बुक्स भी आती हैं। अब अलहमदिल्ला काफ़ी काम हो गया है, ईरान में तो फारसी में मौजूद थी, अब उर्दू के अंदर भी मौजूद है और इंग्लिश के अंदर भी मौजूद है स्टोरी बुक्स। बच्चे के साथ, बच्चे को पढ़ाना नहीं है, बच्चे के साथ बैठ के आपने पढ़ना है, यानी आप उसको टेक्निकली सुनाना चाह रही हैं, लेकिन बोलेंगे आओ कहानी पढ़ते हैं, पढ़ेंगे आप सुनाएंगे टेक्निकली उस, ये 3 ईयर्स की एज में आपने करना है। आपने उसके साथ बैठ के राइम्स, पोएम्स, नुहास, मनकबत, मरसिए, सलाम, सोज, वट एवर आप जो भी हैं करें, उसे अल्फाज तलफ़ नहीं, अभी आपने कोई वो काफ नहीं निकाला ना निकालना, उस शीन को सीन पढ़ ले पढ़ ले दो, आपने सिर्फ अभी क्या करना है, इंजेक्ट करना है, क्या उसे सुनाए, बस सुनाते जाएं, ये सुनाने बता नहीं कि उसके आप बोले मैं पढ़ ली हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम सुनो। अच्छा, स्टोरी पे चूंकि इलस्ट्रेशन होती है वो अट्रैक्ट होता, तो आपने दूसरा काम क्या करना है, रीडिंग। उसके लिए आप उठा के तौजिल मसाइल खोल के नहीं बैठेंगे, 3 साल की बच्चे आओ बेटा तो आगा सिस्तानी की तौजिल मसाइल में मजूर मालिक क्या होता है और एहतियात वाजिब क्या होती है और एहतियात मुस्तहब ये होता है और राहबत ये होती ना। 3 ईयर्स स्टोरी बुक्स मौजूद हैं, राइम्स मौजूद हैं, ठीक है। बच्चों के मनकबत ने अब तो माशाल्लाह बहुत काम किए हैं उन लोगों ने, तो अब तो मौजूद हैं सारी, द वे टू करबला सुनी होगी आप लोगों ने बच्चों की इंग्लिश में, ठीक वो देखें सर, ये सारी चीज़ें ज़ारत की चीज़ें आ गई। बाकायदा जो इस्लामिक रसाइल उसके अंदर बाकायदा इस तरह जंग अखबार के अंदर आता है ना कि आप डॉट मिलाते हैं तो शेप बन जाती है, तो इस्लामिक बुक्स आ गई हैं, आप बच्चों को डॉट मिलाना सिखाएं। डॉट बनाएगा करबला का नक्शा बन गया, डॉट मिलाएगा या हुसैन लिखा हुआ आ गया, तो ये उसके साथ बैठे एक्टिविटी करेंगे, फिर देखें हम तब्दीली को सही। इस तरह के गेम्स, इस तरह के टॉय जो कि इस्लामिक टॉयज हैं, इस्लामिक बुक्स हैं, बच्चों के लेवल की जनरल बात की मौजूद हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। एंड देन आपने क्या करना है बेसिकली अगेन, कि आपने चूँकि अब क्या कर रहा है, वो पहले तो बिस्तर पे था, करवटे लेता था, फिर क्रॉल, अब वो चल रहा है, ये एक मरहला है। क्योंकि उसने घर, हमने क्या बात की, घर के काम भी नहीं, शॉर्ट तो बैठे हैं जॉब पर 8-9 घंटे, तो जो बेगम साहब हैं उससे ही देखना है, तो अब वो घर के काम कब करे, खुद आराम कब करे, कपड़े कब धोए, प्लान करें। इसलिए पूरे इससे मरबूत जो टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट का, टाइम मैनेजमेंट को हमने 4 वीक्स के पूरे सेशन दिए थे बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर IAS होंगे जवानों को। इस एज के अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट, पोस्ट कोविड एरा के अंदर टाइम मैनेजमेंट कैसे कर दें, इन तमाम मामलों के साथ एक जुमला कह के उस तमाम चीज़ों को समेटता हूँ। आपके मसाइल, आपके मामला, आपका लेवल क्या जनाब सैयद के लेवल से अप है, जिन्होंने पूरी उम्र, मतलब बीबी इज नॉट अ होम हाउस वाइफ, पूरी विलायत की जिम्मेदारी को लेके चलना। लेकिन सीरत पढ़ के अपनाएंगे तो समझ पाएंगे। पढ़ क्या आपकी जिम्मेदारी मौला अली से ज्यादा थी? खिलाफत ज़ाहिरी की जिम्मेदारी, खिलाफत ज़ाहिरी से पहले के 25 साल, वो मसाइल, वो जंगे, कितनी जंगे हैं पता है आपको? कम से कम वैसे तो 84 कही जाती है, 84 जंगे कितनी है जब मौला अली की टोटल एज तमाम आइमा में ये तमाम मासूम में सबसे हाईएस्ट एज किसकी है? या रसूल खुदा की है या इमाम सादिक की है? 66 नहीं, 60s में ही है, लेकिन 63 साल मौला अली। देखिए मौलाइयों को इमाम की हयात की टोटल ज़ाहिरी नंबर ऑफ ईयर्स का भी अंदाज़ा नहीं है। जनाब फातिमा की टोटल हयात कितनी है? इमाम हसन इमाम हुसैन की पैदाइश में डिफरेंस कितना है? 58 ईयर्स एज है इमाम। बी फातिमा की एज कितनी है? किस एज में इमाम हुसैन हुए, किस एज में इमाम हसन हुए, दोनों के दरमियान गैप कितना है? क्वेश्चन मार्क है। फिर हम बात कर रहे हैं उस हस्ती के पोते की रकाबत के लिए अपने आप को आमादा करके उसके लश्कर में होना। इतनी बेसिक चीज़ों का इल्म तरबियत करने थोड़ा सा बेदार हो, सब बातें नहीं करना चाह रहा, सख्त मिसालें भी हैं, लेकिन बहरहाल आप तो खुद बाशऊर हैं, तो इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि खुदा इन काविशों को पूरा करे और हमें भी तौफीक अता करे कि इन मफाहिम पे और इन खुदाई जो उमूर हैं उसमें भी अपना हिस्सा डाल सकें इंशाल्लाह, और इमाम के हम रकाब होकर उनकी नुसरत कर सकें। मोहम्मद वाल मोहम्मद सलावात।